जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा जमुना तीर वनचारी, जमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन जमुना तीर वनचारी, जमुना तीर वनचारी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे। हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राधार गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे जय राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे राधा श्याम सुंदर श्याम सुंदर राधे जय राधा जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम वृंदावन धाम वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभु जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev. श्रील प्रभुपाद की श्री श्री राधा गिरिधारी जी की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की श्री श्री गौर निताय की श्री श्री राधा दामोदर जी की कार्तिक मास की दामोदर मास की श्रील प्रभुपाद की समवेत गौर भक्त वृंद की समवेत गौर भक्त वृंद की समवेत गौर भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे ओ नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जय मुदीरयते ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददान्ति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखानितांश नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिले निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महाबदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरतिशे नमः सङ्कर्षणकारणतसायि गर्भोदसायि च पयोधिसायि शेषस्य जस्यां सह सकलसनित्यानन्दाक्षर रामं शरणं ममास्तु हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये ओम नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। इस तीन दिन की भागवत कथा में या दामोदर लीला की कथा में आप लोगों को स्वागत है। स्वागत के साथ साथ आप लोगों का आशीर्वाद का याचना करते हैं कि हम इस विषय पर कुछ जो भी सुने हैं या पढ़े हैं उसको प्रस्तुत कर सकें। पहले तो हम इस बात को प्रस्तुत करना चाहते हैं, असलियत में इस भागवत को प्रस्तुत करने के लिए या इस भागवत कथा करने के लिए योग्यता की आवश्यकता होता है, और जो कि अगर शास्त्रों से देखा जाए तो उस प्रकार का योग्यता दिखाई नहीं पड़ रहा है। श्रील प्रभुपाद जी एक जगह कहते हैं कि मैं जो भी किताब लिख रहा हूँ इसमें मेरा रंच मात्र भी श्रेय नहीं है, और मेरे अंदर भी बहुत सारा गलतियाँ हैं, मगर मैं जो प्रस्तुत कर रहा हूँ और जो लिख रहा हूँ उसमें गलतियाँ नहीं है। इस प्रकार से कहने का अर्थ यह है कि श्रील प्रभुपाद जो कुछ भी प्रस्तुत किए हैं वो अपने मन से कुछ प्रस्तुत नहीं किए थे, अपने गुरु महाराज से जो कुछ भी उन्होंने श्रवण किया था और आचार्यों के ग्रंथों से जो कुछ उन्होंने पढ़े थे बस उसी को यथारूप प्रस्तुत कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने ये दावा करके कह रहे थे कि मेरे प्रवचन में या मेरे ग्रंथ में कोई भी त्रुटि नहीं है, क्योंकि ये भले ही मेरे अंदर गलतियां हैं क्योंकि मैं इसको प्रस्तुत नहीं कर रहा हूँ, मेरे गुरु का और मेरे गुरुजी ने जो उपदेश दिए थे उस सब को ही मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। उसी हिसाब से इस 3 दिन के अंतर्गत मैं कुछ भी जो भी प्रस्तुत करूँगा भगवान की लीलाओं के बारे में, श्रीमद् भागवतम के बारे में, ये ना ही मेरा कोई मनोगढ़ंत कथाएँ हैं या ना ही कुछ अपने से बता रहा हूँ, केवल जो कुछ भी प्रभुपाद जी के श्रीमद् भागवतम में और उच्च वैष्णवों के प्रवचनों में श्रवण किया है केवल उसी को प्रस्तुत करना चाहता हूँ। क्यों प्रस्तुत करना चाहता हूँ, इस प्रकार के इस कार्यक्रम का क्यों आयोजन किए हैं, क्योंकि जब हमने सुना इस विषय को और इस महीना चल रहा था तो इस विषय को जब भी प्रवचन में हमने सुना कि ये दामोदर मास हैं और इस लीला को श्रवण करना चाहिए, और जैसे ही हमने सुना कि इतना रोचक लगा कि ऐसा लगा कि ये भी दूसरों को भी सुनाना चाहिए ताकि सभी लोग उसका आनंद ले सके, इसलिए सोचे कि इसको प्रस्तुत करना चाहिए लोगों के सामने और जैसे सुने वैसे यथारूप। इसलिए इस प्रकार से हम 3 दिन का इस भगवान दामोदर की लीलाओं के बारे में श्रवण करेंगे। 3 दिन ही क्या है, 3 महीना नहीं, 3 साल में ही ऐसे कई दिन भी बीत जाएगा मगर भगवान की कोई एक लीला का भी वर्णन कोई नहीं कर सकते हैं। अनंत हैं भगवान, अनंत हैं उनके नाम और उनकी लीला, सब कुछ अनंत हैं, क्योंकि भगवान के नाम में, भगवान में और भगवान की लीलाओं में, धाम में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं है, ये सिद्धांत है। तो देखते हैं हम लोग कितना हद तक प्रस्तुत कर पाते हैं, सुन सकते हैं मिलजुल कर, और इसीलिए हम आप लोगों से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग आशीर्वाद करें ताकि हम जो कि सुने हैं उसको प्रस्तुत करने में सक्षम हो जाए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है अगर कोई बुजुर्ग किसी व्यक्ति के ऊपर क्रुद्ध होते हैं या अशांत होते हैं तो उस व्यक्ति का अधोपतन होता है, इसीलिए ना ही कथा के व्यासासन में बैठ गए हैं और कुछ बोलने का हमारे पास कला है प्रस्तुत करने का और सिन्हा ठान के कुछ लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिए, ये तरीका नहीं है। सभी लोगों का आशीर्वाद रहना जरूरी है, इसलिए जितने भी बैठे हैं वैष्णव सभी सारे वैष्णवों के चरणों में, श्रील प्रभुपाद के चरणों में यही प्रार्थना है कि हमारे ऊपर कृपा करें, कि आशीर्वाद करें कि हम इस चीज़ों को प्रस्तुत करने में सक्षम हो जाएं। बस इस 3 दिन के अंतर्गत श्रीमद् भागवतम के लगभग 3 अध्यायों के बारे में हम लोग श्रवण करेंगे। असलियत में श्री भगवान दामोदर की लीला श्रीमद् भागवतम में 10वें स्कंद के अंतर्गत 9वें अध्याय में संपूर्ण रूप से मिलता है, उखल बंधन, और 10वें अध्याय में यमलार्जुन का उद्धार के बारे में है, और 8वें अध्याय में 8th चैप्टर में इसका इंट्रोडक्शन है, उखल बंधन क्यों हुआ भगवान को, इस प्रकार से है। और ये उखल बंधन असलियत में आज के दिन ही घटित हुआ था, कार्तिक का महीना था और दिवाली का दिन था, सभी लोग आज मना रहे हैं और वैष्णव लोग कल मनाएंगे हम, तो इस दिवाली के दिन पर ही ये उखल बंधन घटित हुआ था, इसलिए हमने सोचा कि इसी दिन क्योंकि भगवान का इस लीला का श्रवण किया जाए। कुछ लोग कुछ भक्त लोग कह रहे थे कि इस दिन अगर कथा करेंगे तो बहुत लोग जो है अपना अपना घरों में दिया सजाने में और पटाखा फोड़ने में और खाद्य पदार्थ इत्यादि बनाने में व्यस्त रहेंगे और कोई आएंगे नहीं। मगर क्योंकि लीला को इसी दिन घटित हुआ था इसीलिए आज ही के दिन इसको प्रस्तुत करने के लिए इच्छा प्रकट किए थे। तो यह अध्याय इस प्रकार से शुरू होता है, नवम अध्याय, एक श्लोक से। उस श्लोक है सुखदेव गोस्वामी का। एकदा गृहदासीसु, आप लोग दोहरा सकते हैं बाद में, एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि यानि यानि गीतानि तद्बालचरितानि च दधि निर्मंथन काले स्मरन्ति तान्य गायत। इस प्रकार के श्लोक से सुखदेव गोस्वामी कहना शुरू करते हैं। ये जो श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भगवद गीता है ये एक एक कथोपकथन है, कन्वर्सेशन। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण और भगवान के सखा अर्जुन के बीच में कथोपकथन है। अर्जुन को बहुत सारा समस्या है, डाउट से, और इस सब को समाधान कर रहे हैं भगवान कृष्ण। उसी प्रकार से जो श्रीमद् भागवतम है, परीक्षित महाराज ने प्रश्न कर रहे हैं, जिज्ञासा कर रहे हैं, और इन सारे प्रश्नों का, जिज्ञासाओं का समाधान सुखदेव गोस्वामी उनके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं इस प्रकार से। इसलिए ये जो श्लोक हम लोगों ने उच्चारण किए हैं ये सुखदेव गोस्वामी का श्लोक है। श्री शुक उवाच, सुखदेव गोस्वामी कहना शुरू किए। जो भी कथा सुखदेव गोस्वामी सुनाते हैं वो खास करके परीक्षित महाराज के जिज्ञासाओं पर आधारित हुआ करता है। परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछते हैं और उसी का जवाब में सुखदेव गोस्वामी उत्तर देते हैं। मगर ये जो अध्याय है, नवम अध्याय दसवें स्कंद का, ये अचानक अपने से शुरू कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। यहाँ पे कोई प्रश्न नहीं पूछे थे परीक्षित महाराज कि आप बताइए मेरे को भगवान कृष्ण को क्यों यशोदा मैया ने बांध दिए थे उखल में। इस प्रकार से कोई प्रश्न नहीं किए थे। और सीधा सीधा इसके पहले अध्याय में कथा आ रहा था भगवान का विश्व रूप का दर्शन अपने मुख के अंदर, अपने मैया को लाला ने अपने मुख के अंदर विश्व रूप का दर्शन कराए। दर्शन कराने के बाद माता ने मोहित हो गई थोड़ी देर के लिए, कुछ क्षण के लिए, और तुरंत बाद भी भगवान ने अपने माया के द्वारा, योग माया के द्वारा उसको प्रछत कर दिए और तुरंत ही मैया ने लाला को फिर से अपना अर्भग खुद का पुत्र स्नेह में देखने लगे और स्नेह करने लगे। इस प्रकार की कथाओं को बताते बताते तुरंत ही सुखदेव गोस्वामी ने इस अध्याय को शुरू करते हैं। कोई जिज्ञासा नहीं था, मगर ऐसा क्यों सुखदेव गोस्वामी अपने से क्यों शुरू किया इसको? क्योंकि अगर जो पढ़े होंगे इस श्रीमद् भागवतम को शुरू से, भगवान श्री कृष्ण की आविर्भाव की लीला इत्यादियों को, उस समय श्री भगवान कृष्णचंद्र के आविर्भाव के समय प्रश्न पूछते हैं परीक्षित महाराज ने। इस दसवें अध्याय की पहले अध्याय, दसवें स्कंद के पहले अध्याय के 12 नंबर श्लोक में परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं। एतद् अन्यश्च सर्वं मे मुने कृष्ण विचोष्टितम् वक्तुं अर्हसि सर्वज्ञ श्रद्धाधान्य वितस्मतु। वो प्रश्न पूछते हैं, बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं एक साथ। कहते हैं कि भगवान कृष्ण क्यों ये धराधाम में प्रकट हो रहे हैं, बलदेव जी का नाम संकर्षण क्यों पड़ा, शरीर त्यागे बिना बलदेव जी जो है एक माँ की पेट से दूसरे माँ के पेट में कैसे जा सकते हैं, भगवान कृष्ण ने कितना दिन गोकुल में रहे और वहाँ से फिर गोकुल से फिर वृंदावन कितने दिन आए, वृंदावन से फिर से दूसरे जगह क्यों उन्होंने अपना जगह परिवर्तन किए, फिर कितने दिन के बाद किस प्रकार की लीलाओं के करने के बाद वो मथुरा में आए। इस प्रकार का बहुत सारा प्रश्न पूछ रहे हैं परीक्षित महाराज। और प्रश्नों को पूछने के बाद एक शंका हुआ परीक्षित महाराज को, क्योंकि भगवान की लीला तो अनंत है और भगवान की लीला अनंत होने पर अगर मेरा प्रश्नों का ही जवाब देंगे सुखदेव गोस्वामी तो भगवान की बहुत सारा कथाएं क्या होगा, छूट सकता है। इसीलिए ये सोचकर परीक्षित महाराज ने ये श्लोक कहते हैं कि एतत अन्यश्च, इसके अलावा भी अन्य और बहुत सारे अलग अन्यश्च यानी अन्य कथाओं को भी सुनाइए सर्वम में यानी मेरे को, करें कि मैंने जितने भी प्रश्न पूछा उसको भी प्रस्तुत कीजिए और मैंने जो पूछा नहीं आपको भगवान के बारे में मैं जो पूछा नहीं उन सारे प्रश्नों को भी उन सारे कथाओं को भी लीलाओं को भी आपने मेरे सामने प्रस्तुत कीजिए। इस प्रकार पूछे थे प्रश्न। अतः इसीलिए इस समय इस नवे अध्याय में सुखदेव गोस्वामी क्या किए, परीक्षित महाराज का प्रश्न किए बिना ही नवम अध्याय का शुरुआत कर रहे हैं। एकदा गृह दासीसु, यहाँ पे प्रश्न पूछे नहीं, पहले बता दिए थे परीक्षित महाराज कि मैंने जो पूछा और जो पूछा नहीं वो भी बताइए। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी अभी बिना पूछे ही ये कथा को कहना शुरू कर रहे हैं। और क्या कारण है इस कथा को कहना, तभी अष्टम अध्याय में एक प्रश्न पूछते हैं परीक्षित महाराज। अष्टम अध्याय में पूछते हैं जब भी भगवान ने अपने मैया को अपने मुख के अंदर विश्व रूप का दर्शन कराए थे, उस समय मैया ने कुछ क्षण के लिए यशोदा मैया मोहित हो गई थी कि ये तो भगवान स्वयं विष्णु है या विष्णु का शक्ति ही इसके अंदर है, मैं इसको अपना पुत्र सोच रही हूँ। ऐसा थोड़ी देर के लिए, क्षण भर के लिए मात्र ऐसा सोच विचार आया था, तो तुरंत ही भगवान ने अपने योग माया के द्वारा उस विचार को हटा दिए थे मैया ने, और उस तुरंत बाद ही अपना पुत्र समझकर उनको फिर से लालन करने लगी। और जैसे लालन करने लगी, अपने गोद में लेके दूध पिलाने लगी यशोदा मैया ने, उस समय परीक्षित महाराज को शंका हुआ। परीक्षित महाराज जानना चाहते थे यशोदा मैया और नंद महाराज ने ऐसा कौन सा तप किए थे, ऐसा कौन सा कार्य किए थे जिसके फल स्वरूप श्री भगवान ने स्वयं इस त्रिभुवन का सृष्टिकर्ता, इस संसार का सृष्टिकर्ता, इंद्र चंद्र वरुण यमराज जिसके अधीन में चलते हैं, जिसके आदेशों से चलते हैं, दिन और रात होता है, जिनके नाम लेने मात्र से ही यम लोक तक डरते हैं, यमराज तक डरते हैं, अपने अनुचरों को कहते हैं जो व्यक्ति एक बार भी अगर भगवान हरि का नाम लिया है उसके पास कभी गलती से मत जाना, ये कथा हम लोग अजामिल कथा से जानकारी प्राप्त होती है। तो इस प्रकार का जो भगवान परमेश्वर है, नियंता है सबका, इन्होंने इनके पुत्र व्यवहार कर रहे हैं, इनका पुत्र बन के आए हैं, इनके तनों का दूध पी रहे हैं, इनके घर में, इनके घर के आंगन में रेंग रहे हैं, ऐसा कौन सा तपस्या किया था नंद महाराज ने, इस प्रकार से कौन से तपस्या किया था यशोदा मैया ने जिसके द्वारा स्वयं भगवान उनके घर में बालक के रूप में खेल रहे हैं, कितना सौभाग्य प्राप्त हुआ है इन लोगों को, ये मैं जानना चाहता हूँ। परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी को प्रश्न किया। क्यों प्रश्न किए, क्योंकि परीक्षित महाराज सोच रहे थे अगर मेरे को इस बात को पता चल जाए तो मैं भी इस प्रकार का कार्य करूंगा और भगवान का प्रेम को प्राप्त करूंगा, भले ही इस जीवन में मेरे को 7 दिन ही जीना है, कुछ दिन तो बीत चुका था, हो सके तो अगले जीवन में मैं कर सकूं इस प्रकार का व्रत, इस प्रकार का साधना, इस प्रकार का, तो ये सोचकर प्रश्न पूछे। और भी उनका विचार था परीक्षित महाराज का कि जितने लोग यहाँ पे श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम का, ये लोग भी इस कथा को अगर सुनेंगे और इसी प्रकार का कार्य करें तो इन लोगों का भी उद्धार हो सकता है, ये लोग भी भगवान का इस प्रकार का प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार की विचार रखते हुए श्रील परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी को ये प्रश्न किए थे कि ऐसा कौन से तप किए थे, ऐसे कौन सा तप, यज्ञ या साधना किए थे जिसके द्वारा, पुण्य किए थे जिसके द्वारा इस प्रकार सा भगवान स्वयं ईश्वर ने उनके घर में बालक के रूप में कार्य कर रहे हैं, इस प्रकार से प्रश्न पूछे। और सुखदेव गोस्वामी ने बहुत अच्छी तरह से इस प्रश्न का जवाब देते हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं इसमें, असलियत में ये जो यशोदा मैया और जो नंद बाबा है ये दोनों और कोई नहीं है, स्वयं वसुदेव और देवकी हैं। इस प्रकार से उन्होंने उत्तर देते हैं। सुखदेव गोस्वामी का प्रश्न था नंदः किम करोत ब्रह्मन् श्रेय एवं महोदयम् यशोदा च महाभागा पापो यस्यास्तनम् हरि। नंदः किम करोत, ऐसा कौन सा कार्य किया था नंद महाराज ने, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ ब्रह्मन श्रेय। इस प्रकार से कौन सा श्रेय युक्त काम किए थे नंद महाराज ने, जिसके द्वारा भगवान स्वयं उनके घर में बालक के रूप में काम कर रहे हैं, और उसके साथ साथ यशोदा मैया ने, यशोदा च महाभागा पापो जैसे स्तनम हरि, यशोदा मैया भी इस प्रकार से कौन से कार्य किए थे जिसके द्वारा भगवान स्वयं ईश्वर उनके गोद में बैठकर उनका स्तनों का पान कर रहे हैं, दूध पान कर रहे हैं, ऐसा कौन कौन सा कार्य किया था यशोदा मैया, ये जानने के लिए उन्होंने जिज्ञासा करने लगे। तो इस प्रकार की जिज्ञासा का उत्तर, उसके साथ साथ और एक प्रश्न पूछते हैं परीक्षित महाराज, पितरौ नान्व विद्यन्तं कृष्ण दरार्ध के हितम गायन्तद्यापि कवयो यल्लोक मलापहम। पितरों का अर्थ है, यहाँ पर अनुवाद करते हैं श्री प्रभुपाद जी ने, कृष्ण असली पिता माता। परीक्षित महाराज कहते हैं कृष्ण का असली पिता माता कभी इस प्रकार का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। इसका क्या अर्थ है? असली पिता माता का अर्थ यह है कि इस संसार में, इस लोक में देवकी को और वसुदेव को, देवकी मैया और वसुदेव को भगवान के असली पिता माता माना जाता है, क्योंकि देवकी के गर्भ से भगवान ने प्रकट हुए थे, और ये कथा हम लोगों को मालूम है कि उसको स्थानांतरित किया गया था वसुदेव जी के द्वारा। अतः इस संसार में सारा लोग क्या मानते हैं कि जो कृष्ण है भगवान, ये देवकी और वसुदेव का संतान है। उनके संतान होते हुए भी उनको इस प्रकार की रोचक पूर्ण बाल लीलाओं को देखने के लिए, बाल लीलाओं में हिस्सा लेने के लिए मौका प्राप्त नहीं हुआ था, सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था। मगर नंद और यशोदा को इस प्रकार का सौभाग्य प्राप्त कैसे हो सकता है, कैसे हुआ है, क्या किए थे उन्होंने? और कहते हैं कि गायन्त्य अद्यपि कवयो, किनका बाल लीलाओं को दर्शन करने के लिए सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिनका गुणगान आज तक भी कवियों ने गान कर रहे हैं, जिनका गुणगान आज भी गायन्त्य अद्यपि, आज तक, आज तक मतलब अक्टूबर 17 तारीख तक कवियों ने गान कर रहे हैं। कौन है कवियां? आदि कवि ब्रह्मा जी, शिव जी, ये सारे कवियों ने उन भगवान की लीलाओं का गान कर रहे हैं, जिनका गुणगान कर रहे हैं, जिनका स्मरण कर रहे हैं, वो नंद और यशोदा मैया के घर में आंगन में खेल रहे हैं, और बालक के रूप में, एक साधारण सा बालक के रूप में। और ये सौभाग्य देवकी और वसुदेव को भी प्राप्त नहीं हुआ। इसका अर्थ क्या है, इसका कारण क्या हो सकता है कि नंद और यशोदा मैया को ही इस भाव और इस प्रकार का बाल लीलाओं का दर्शन करने के लिए और लीलाओं में भाग लेने के लिए मौका मिला था, सौभाग्य प्राप्त हुआ था? इस प्रकार से परीक्षित महाराज ने प्रश्न करते हैं। ये प्रश्न को सुनकर सुखदेव गोस्वामी द्रोण और वसुना के, द्रोण और धरा, द्रोण और धरा के कथा को सुनाते हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, श्री सुक उवाच, द्रोणं वसुना प्रवरो धरया भार्याया सह करिष्यमाणं आदेशं ब्राह्मणस्तमुवाचः। कहते हैं द्रोण वसुनां प्रवरो, अभी प्रश्न पूछे परीक्षित महाराज, प्रश्न क्या था, नंद महाराज और यशोदा मैया ने ऐसा कौन सा कार्य किया था जिसके फल के स्वरूप भगवान स्वयं उनका पुत्र बने? इसके जवाब में सुखदेव गोस्वामी उत्तर दे रहे हैं, द्रोणं वसुना प्रवरो, जो द्रोण है, द्रोण नामक व्यक्ति, ये वसुनांग प्रवरो, वसुनांग प्रवरो का अर्थ होता है वसुओं में श्रेष्ठ, प्रवरो का अर्थ होता है प्रकृष्ट रूपेण बरह, बरह का अर्थ होता है श्रेष्ठ, प्र यानी प्रकृष्ट रूपेण संपूर्ण रूप से, बरह का अर्थ होता है श्रेष्ठ, प्रवरो का अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ। प्रभुपाद जी ने अनुवाद करते हैं सर्वश्रेष्ठ, किसमें सर्वश्रेष्ठ, वसुओं में। कौन है वसुएं? देवताओं की एक जाति है, देवताओं में एक जाति होते हैं वसु, इन वसुओं में श्रेष्ठ होते हैं द्रोण, उनका नाम है द्रोण, और जो वसुओं में श्रेष्ठ है उनको वासुदेव, वसुदेव कहा जाता है। जिस प्रकार से नरों में श्रेष्ठ नरदेव, उसी प्रकार में वसुओं में जो श्रेष्ठ है उनको कहते हैं वसुदेव। और ये जो वसुदेव है, ये द्रोण जो है दूसरे कोई नहीं है, ये स्वयं वसुदेव हैं। और कौन है? उनका भार्या धरा, उनका स्त्री जो है धरा, ये धरा यशोदा मैया की भी एक नाम धरा था। जिस समय भगवान ने मिट्टी खाने का लीला कर रहे थे, ब्रज की मिट्टी को जिस समय खा रहे थे, उस समय एक भक्त ने अपना भाव को बताते हैं कि भगवान ने क्यों मिट्टी खाया। जया ने पूछने लगी, लाला तूने क्यों मिट्टी खाया? तो भगवान कहता है, मैया मैं देख रहा था कि ये धरा में ज़्यादा स्वादिष्ट है, ज़्यादा प्रेममयी है, या आप ज़्यादा प्रेममयी हो, ज़्यादा प्रेम देने वाले हो, ज़्यादा स्वादिष्ट हो, ये देख रहा था मैं। क्योंकि इसका नाम भी धरा था और ये धरती का नाम भी धरा, इसीलिए मैं ये धरा को खा रहा हूँ कि आज तक मैंने आपका स्तन का दूध पिया है, कितना मधुर है, कितना प्रेम से आप पिला रही हो। तो मैं अभी यह देखना चाह रहा था कि ये धरा में आप में कितना अंतर है, आप कितना प्यार करते हो मेरे को। यह सोचकर मैं ये धरा को थोड़ा सा अपने मुंह में डाला। यह भाव था भगवान का, ऐसा कहते हैं कुछ भक्त लोग। तो यशोदा मैया का भी एक नाम धरा है। तो ये बसुना, बसुओं में श्रेष्ठ बसुनाम प्रवरो द्रोण, ये द्रोण और धरा पति पत्नी बसुओं में यानी देवलोक में, इन लोगों ने ब्रह्मा जी का आदेश को पालन करने के लिए इस धरती में आए थे। क्या आदेश दिए थे ब्रह्मा जी ने? ब्रह्मा जी का कार्य क्या है? सृष्टि का सर्जना करना। वो जिसको पहले सर्जना करेंगे उनको बोलेंगे कि आप लोग सृष्टि का सर्जना करो आगे, इस प्रकार से कहते हैं ब्रह्मा जी। वो जो पुत्र उत्पन्न होते हैं उनसे अपने पुत्रों को कहते हैं कि आप लोग भी सृष्टि सर्जना में मेरे को मदद करो। तो इस प्रकार से इन लोगों को कहें, श्री कृष्ण प्रसाद महाराज अपने कथा में कह रहे थे कि हो सकता है ब्रह्मा जी इन लोगों को कहें कि आप लोग धरती में जाके गौओं का रक्षा करो, गो पालन करो, ये आदेश दिए। और ये आदेश को पालन करने के लिए द्रोण और धरा इस धरती में आए। मगर धरती में आने से पहले ब्रह्मा जी से एक आशीर्वाद मांगे कि हम आपके आदेशों को पालन करेंगे, मगर हमको कुछ वरदान चाहिए। क्या है वो वरदान? जातयोर न महादेवे भूवि विश्वस्वरे हरो भक्ति हिस्यात परमालोके ययांजो दुर्गतिम तरेत। इसका कहना है, द्रोण तथा धरा ने कहा, कृपा करके हमें अनुमति दें कि हम पृथ्वी पर जन्म लें, जिससे परम भ्रम, परम ब्रह्म, परम नियंता तथा समस्त लोगों के स्वामी भगवान भी प्रकट हों और भक्ति का प्रसार करें, जो जीवन का चरम लक्ष्य है, और जिससे ग्रहण करके इस भौतिक जगत में उत्पन्न होने वाले लोग सरलता से भौतिकवादी जीवन को दुखमय स्थिति से उबर सकते हैं। हमको धरा में जाने की कोई समस्या नहीं है, हम आपके आदेशों को पालन करते हुए धराधाम में जाएंगे, मगर हमको इस प्रकार का वरदान दीजिए कि हम जैसे ही धराधाम में जाएंगे तो परम ब्रह्म, परम नियंता भगवान हमारे पुत्र के रूप में आएंगे। उनका कहना था कि भगवान परम नियंता में हमारा प्रेम हो, प्रेमा भक्ति हो। और किस प्रकार की भक्ति हो? जो भक्ति की कभी भी अटूट, इस प्रकार का भक्ति हो, प्रेमा भक्ति। आगे के श्लोकों में पता चलता है कि ततो भक्तिर भगवती पुत्र भूते जनार्दन, भगवान जनार्दन को पुत्र भूत, पुत्र के रूप में हमारा प्रेम हो, यह कहना चाह रहे थे वो लोग द्रोण और धारा ने। और ब्रह्मा जी ने उनको ये वरदान दिए थे। ब्रह्मा जी ने कहा, हाँ ऐसा ही होगा, तथास्तु, ये कहकर द्रोण और धरा ने आए थे। मगर यहाँ पे कुछ लोग शंका करते हैं, क्या ब्रह्मा जी के वरदान से द्रोण और धरा को इस प्रकार का भगवान का प्रेम भक्ति लाभ हो सकता है? क्योंकि सभी लोगों को मालूम होगा और दामोदर लीला के अंत में भी, अंत के श्लोकों में भी पता चलता है कि इस संसार में श्रेष्ठ व्यक्ति ब्रह्मा जी, सारे देवताओं में श्रेष्ठ महादेव, वैष्णवों में श्रेष्ठ महादेव, स्वयं भगवान विष्णु की अर्धांगिनी लक्ष्मी को भी गोकुल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं था, नहीं कर पाए थे। ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं भगवान के सामने कि हे भगवान, मेरे को आपके गोकुल में एक घास का तिनका बना दीजिए, इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं। अगर जो ब्रह्मा जी इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं, क्या उनके आशीर्वाद से इस द्रोण और धरा नामक वसुओं को भगवान की इस प्रकार का प्रेमा भक्ति और भगवान का माँ और बाप बनने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है? कोई कोई ऐसा शंका भी करते हैं। अगर सोचिए, हमारे पास कोई वस्तु नहीं है, हमारे पास 100 रुपया नहीं है तो हम किस प्रकार से एक व्यक्ति को 100 रुपया प्रदान कर सकते हैं? हम तड़प रहे हैं कि हमको कोई दान दे दे, भिक्षा दे दे 100 रुपया, तो हम किस प्रकार से आशीर्वाद या किसी को दान दे दे 100 रुपये का? यह नहीं हो सकता है। कभी कभी इस प्रकार से भक्त लोग कहते हैं, भाव को व्यक्त करते हैं कि ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से क्या ऐसा मिल सकता है, इस प्रकार का सौभाग्य भगवान कृष्ण की प्रेमा भक्ति मिल सकता है, भगवान की माँ बनने की सौभाग्य, अपने स्तनों को भगवान के मुंह में डालने की सौभाग्य प्राप्त हो सकता है, इस प्रकार का शंका व्यक्त करते हैं। मगर इस अध्याय में श्री सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि ये जो कृष्ण प्रेम उनको प्राप्त हुआ था, भगवान कृष्ण पुत्र के रूप में आए थे उस समय द्रोण में या भगवान कृष्ण के माता के अंदर अत्यंत संपूर्ण रूप से भगवान कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ स्नेह था, वात्सल्य प्रेम था, और इसी वात्सल्य प्रेम के कारण ही भगवान उनके पुत्र बने हैं। अगर ये द्रोण और वसु उनका माता पिता है और यशोदा और नंद महाराज, असलियत में भगवान कृष्ण के माता और पिता भगवान यशोदा मैया और नंद बाबा हैं। यशोदा मैया और नंद बाबा जो है भगवान की शाश्वत माता और पिता हैं। ये भगवान के धाम में सदैव विद्यमान होते हैं, नित्य सिद्ध। इन लोगों के लिए किसी भी प्रकार का साधना का आवश्यकता नहीं है या किसी का आशीर्वाद का, किसी का वरदान का आवश्यकता नहीं रहता है। ये नित्य सिद्ध होते हैं, भगवान के नित्य परिकर होते हैं। भगवान जब कभी भी इस धराधाम में आविर्भाव होते हैं, प्रकट होते हैं, तो अपने सहचरों के साथ प्रकट होते हैं, तो वो नंद यशोदा मैया है। भक्त लोग कहते हैं कि ये जो द्रोण और धरा यशोदा मैया और नंद बाबा की शरीर में प्रविष्ट हुए थे भगवान की सेवा में। जब कभी अगर इस संसार में कोई साधन सिद्ध भक्त होता है, यानी साधन करते करते सिद्धि को प्राप्त करता है, अपना स्वरूप को प्राप्त करता है, तो वो पहले ब्रज में किसी एक नित्य सिद्ध के परिकर के शरीर में प्रविष्ट होके लीला में प्रवेश करता है, ऐसे कुछ लोग कहते हैं। तो इस प्रकार से द्रोण और धारा प्रवेश किए थे। मगर सुखदेव गोस्वामी माता यशोदा की ये प्रगाढ़ कृष्ण वात्सल्य प्रेम को प्रस्तुत कर रहे हैं। इस वात्सल्य प्रेम के कारण ही कृष्ण ने उनके स्तनों को पान करते थे और उनके घर में खेलते थे। तो इस वात्सल्य प्रेम कितना तीव्रता था, किस प्रकार का प्रेम था, इसको प्रस्तुत करने के लिए, यह सुनाने के लिए परीक्षित महाराज को तुरंत ही उसके बाद ये दामोदर लीला के कथन को शुरू करते हैं। दामोदर लीला, क्योंकि दामोदर लीला के कथन में संपूर्ण रूप से भगवान के प्रति प्रगाढ़ प्रेमा भक्ति या वात्सल्य भक्ति कितना प्रगाढ़ है माता का, और इस प्रगाढ़ प्रेमा भक्ति के द्वारा इस भगवान के भक्ति के द्वारा भगवान किस प्रकार से कृपावश भक्त के हाथ में, भक्त के अधीन हो जाते हैं, इस बात को हम लोगों को दर्शाते हैं भगवान। इसीलिए परीक्षित महाराज, सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को तुरंत ही इस दामोदर लीला का कथन का प्रारंभ किए थे। क्या कारण था? पहली बात तो जो प्रश्न किए थे परीक्षित महाराज पहले अध्याय में, मैं जो नहीं पूछूंगा वो भी बताइए, इसीलिए बता रहे हैं। दूसरा था कि वो यशोदा मैया की वात्सल्य प्रेम कितना प्रगाढ़ था, उसको प्रस्तुत करना चाहते थे परीक्षित महाराज के सामने। अगर इसी प्रकार से कोई व्यक्ति अगर कृष्ण से प्रेम करते हैं, भक्ति करते हैं, तब जाके कृष्ण उनको प्राप्त हो सकते हैं, ये भाव था। इस बात को प्रस्तुत करने के लिए परीक्षित सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को इस दामोदर लीला का कथा श्रवण कराते हैं। अतः इसीलिए इस परीक्षित सुखदेव गोस्वामी सीधा इस नवम अध्याय में शुरू करते हैं। एकदा गृह दासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधिहि, यानी यानी च गीतानि तद्बाल चरितानि च दधि निर्मंथन काले स्मरन्ति तान्य गायत। पहला श्लोक क्या है? एकदा एक दिन, दा का अर्थ है दिन, एक का अर्थ है एक, एकदा का अर्थ होता है एक दिन। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने टीका में लिखते हैं ये एक दिन यही दिन था, आज का दिन था, ये एक दिन दूसरा कोई नहीं, आज का दिन था। कौन सा दिन है? दिवाली का दिन था। एकदा वो दिन था, दिवाली का दिन। गृहदासीसु यशोदा ನಂದ ಗೇಹಿನಿ ಏಕದಾ ಯಶೋದಾ ನಂದ ಗೇಹಿನಿ ಏಕದಾ ಕ್ಯಾ ಹುವಾ ಏಕ ದಿನ ಯಶೋದಾನೆ ಕೌನ್ ಹೇ ವೋ ಯಶೋದಾ ನಂದ ಗೇಹಿನಿ ನಂದ ಗೇಹಿನಿ ಕಾ ಅರ್ಥ ಹೋತಾ ಹೇ ನಂದ ಮಹಾರಾಜ ಕಿ ಘರ್ ಕಿ ಗೃಹಿಣಿ ನಂದ ಮಹಾರಾಜ ಕಿ ಪತ್ನಿ ನಂದ ಮಹಾರಾಜ ಕಿ ಘರ್ ಕಿ ಸ್ವಾಮಿನಿ ಗೇಹ ಸಮಸ್ತೆ ನಾ ಜಿಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಶ್ರೀಲ ಭಕ್ತಿ ವಿನೋದ್ ಠಾಕುರ್ ಅಪ್ನೇ ಭಜನ್ ಮೇ ಲಿಖತೆ ಹೇ ಮಾನಸ ದೇಹ ಗೇಹ ಜೋ ಕಿಚ್ಚು ಮಾನಸ ದೇಹ ಗೇಹ ಜೋ ಕಿಚ್ಚು ಮೋರ್ ಅರ್ಪಿಲು ತುಯಾ ಪದೇ ನಂದ ಕಿಶೋರ್ ಮಾನಸ ಯಾನಿ ಮನ್ ದೇಹ ಯಾನಿ ಯೇ ಶರೀರ ಗೇಹ ಕಾ ಅರ್ಥ ಹೋತಾ ಹೇ ಘರ್ ದೇಹ ಗೇಹ ಕಾ ಅರ್ಥ ಹೋತಾ ಹೇ ಘರ್ ಮಾನಸ ದೇಹ ದೇಹ ಗೇಹ ಜೋ ಕಿಚ್ಚು ಮೋರ್ ಜೋ ಕುಚ್ ಮೇರಾ ಹೇ ಅರ್ಪಿಲು ತುಯಾ ಪದೇ ನಂದ ಕಿಶೋರ್ ಹೇ ನಂದ ಕಿ ಕುಮಾರ್ ತುಮಾರೇ ಚರಣ ಮೇ ಮೇ ಸಬ್ ಕುಚ್ ಅರ್ಪಣ ಕರ್ತಾ ಹೂ ತೋ ಯೇ ಗೇಹ ಶಬ್ದ ಕಾ ಅರ್ಥ ಹೋತಾ ಹೇ ಘರ್ ತೋ ನಂದ ಗೇಹಿನಿ ಘರ್ ಕಾ ಸ್ವಾಮಿನಿ ಗೇಹಿನಿ ಘರ್ ಕಾ ಸ್ವಾಮಿನಿ ಕೋ ಗೇಹಿನಿ ಕಹತೆ ಯಶೋದಾ ಜೋ ಕಿ ನಂದ ಗೇಹಿನಿ ನಂದ ಮಹಾರಾಜ ಕಿ ಪತ್ನಿ ಹೇ ನಂದ ಮಹಾರಾಜ ಕಿ ಘರ್ ಕಿ ಗೃಹಿಣಿ ಹೇ ಕ್ಯಾ ಕಿಯಾ ಉಸ್ನೆ ಗೃಹದಾಸಿಸು ಕರ್ಮಾಂತರ ನಿಯುಕ್ತಾಸು ಏಕದಾ ಯಶೋದಾ ನಂದ ಗೇಹಿನಿ ಗೃಹದಾಸಿಸು ಕರ್ಮಾಂತರ ನಿಯುಕ್ತಾಸು ಈ ಸಂಸ್ಕೃತ ಜೊ ಹೇ ಕಹತೆ ಕಿ ಮೇನೆ ಸುನಾ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾಷಾ ಹೋತಾ ಹೇ ಶ್ಲೋಕ ಜಬ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕರ್ತೆ ಕಿ ಅಪ್ನೆ ಹಿಸಾಬ್ ಸೆ ಇಸ್ಕಾ ರಖೆ ರಹತೆ ಹೇ ಇಸ್ಕಾ ಜೊ ಕರ್ತಾ ಇತ್ಯಾದಿ ಅಲಗ ಅಲಗ ಬಿಖರಾ ಹುಆ ರಹತಾ ಹೇ ಇಸ್ಮೇ ಲಿಖಾ ಕಿ ಏಕದಾ ಗೃಹದಾಸಿಚು ಯಶೋದಾ ನಂದ ಗೇಹಿನಿ ಕರ್ಮಾಂತರ ನಿಯುಕ್ತಾ ಸು ನಿರ್ಮಮಂತ ಸ್ವಯಂ ದಧಿ ತ ಏಕ ದಿನ ಯಶೋದಾ ಜೊ ಕಿ ನಂದ ಕಿ ಪತ್ನಿ ನಂದ ಮಹಾರಾಜ ಕಿ ಪತ್ನಿ ಕರ್ಮಾಂತರ ನಿಯುಕ್ತಾ ಸು ಗೃಹದಾಸಿಸು ಗೃಹ ಕಿ ದಾಸಿಯೋ ಕೋ ಕರ್ಮಾಂತರ ನಿಯುಕ್ತಾ ಸು ಅನ್ಯ ಕಾಮೋ ಮೇ ಲಗಾ ದಿಯಾ में लगाया अन्य कामों में कर्मांतर अंतर का मतलब अन्य कर्म का मतलब कार्य अन्य कार्य में लगाकर कर्मांतर नियुक्तासु लगाकर नियुक्त करके निर्ममंथ स्वयं दधि निर्ममंथ का अर्थ होता है मंथन करने लगी और कैसे स्वयं खुद मंथन करने लगी ये स्वयं शब्द से इस भाव प्रकट होता है कि शायद आज तक कभी ಯಶೋದಾ ಮೈಯಾನೆ ಮಾ ದಧಿ ನಹಿ ಮಥಿ ಹೋಗಿ ಕಭಿ ಕಭಿ ಅಗರ್ ಕೋಯಿ ವರಿಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಗರ್ ಆಕೆ ಕೋಯಿ ಛೋಟಾ ಕಾಮ ಕರ್ತೆ ಹೇ ನಾ ಅರೆ ಪ್ರಭು ಜಿ ಸ್ವಯಂ ಝಾಡು ಲಗಾ ರಹೆ ಥೆ ಮಂದಿರ್ ಕೋ ಸ್ವಯಂ ಲಗಾ ರಹೆ ಥೆ ಮತಲಬ್ ಕ್ಯಾ ಹೇ ವೋ ಪಹಲೆ ಕಭಿ ನಹಿ ಕಿಯೆ ಹೇ ಔರ್ ಅಭಿ ಸ್ವಯಂ ಲಗಾ ರಹೆ ಹೇ ಕಿ ಖುದ್ ಕರ್ ರಹೆ ಹೇ ಉಸ್ ಕಾಮ ಕೋ ಐಸಾ ಇಸ್ ಭಾವ ಕೋ ಪ್ರಕಟ್ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಸುದೇವ್ ಕೋ ಸಂಗತೆ ನಿರ್ಮಮ ಮಂಥ ಸ್ವಯಂ ದಧಿ ದಧಿ ಕೋ ಸ್ವಯಂ ಮಂಥನ್ ಕರ್ ರಹಿ ಹೇ ಕ್ಯೂ ಸ್ವಯಂ ಮಂಥನ್ ಕರ್ ರಹಿ ಹೇ वो तो रानी है नंद बाबा की पत्नी है 9 लाख गाय है पूरे गोकुल में उनका अधिकार है इतने नौकर इतने दासियां हैं पहले ही पता लगा कि गृह दासिसु कितने दासियां होंगे फिर भी यशोदा मैया खुद क्यों बना रही है खुद क्यों माखन बना रही है दधि मथ रही है दधि मथने का अर्थ है दधि मथ के उसमें से माखन निकालना और माखन किस लिए लाला के लिए तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अपने टीका में कहते हैं ये जो दिन था ये दिवाली का दिन था और माता यशोदा ने खुद क्यों माखन बनाने गई परेशानी क्यों उठाई क्योंकि वो पहले से बहुत सारा गोपियों का उल्हाना सुन रही थी अभी कारण बताते हैं सुनेंगे क्यों क्यों यशोदा मैया खुद करना चाहती थी बार 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 गोकुल के ब्रज के गोपियों का उल्हाना सुन सुन के मैया थक रही थी उल्हाना का अर्थ होता है कंप्लेन मैं भी बार बार जब उल्हाना उल्हाना शब्द सुना तो मैं एक प्रभु जी से पूछा प्रभु जी ये उल्हाना होता क्या है बोले कि कंप्लेन शायद उधर की भाषा में भोजपुरी या ब्रज भाषा में उल्हाना कहते होंगे उल्हाना दे रही थी गोपियां उल्हाना का अर्थ होता है कंप्लेन करना माता के पास मैया के पास आके सारे गोपियों ने कंप्लेन कर रहे थे और इस कंप्लेन को सुनते 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 यशोदा मैया थक गई थी क्या कंप्लेन कर रहे थे ये अष्टम अध्याय में आठवें अध्याय में बहुत अच्छी तरह से वर्णन मिलता है आठवें अध्याय में जब यशोदा मैया ने घर में रहा करती थी लाला के साथ उस समय गोपियों ने मैया के पास आके भगवान कृष्ण के बारे में कंप्लेन करने लगते थे असलत में गोपियों उनका भाव नहीं था कंप्लेन करने का भगवान के विरुद्ध में। गोपियां भगवान कृष्ण की लीलाओं को बार बार याद करने के लिए और उनकी लीलाओं को बार बार बोलने के लिए और उनके लीलाओं को बार बार सुनने के लिए इकट्ठा हो जाती थी बातचीत करके मैया के पास आके, उसी लाला के सामने उसी का ये नटखटपन को प्रस्तुत कर रहे थे। एक प्रस्तुत करेगी तो बाकी लोग बहुत ध्यान से और मुग्ध होकर श्रवण कर रहे थे और मैया इस सब को देखकर हंसती थी, कभी कभी कहती थी तुम लोग डांटते क्यों नहीं हो, इस प्रकार से उन्होंने बोलते थे, इस प्रकार से माता यशोदा कहती थी और वो लोग अपना कंप्लेन करते थे। इस कंप्लेन को सुनेंगे, इसके बाद वाला श्लोक का चर्चा करके, बाद वाला श्लोक में बताया गया यानी यानी च गीतानि तद बाल चरितानि च, यानी यानी गीतानि, ये सब को भगवान की बाल लीलाओं के चरित्र को माता यशोदा ने गीत बनाकर गा रही थी। इधर दधि मथ रही थी, इस तरफ दधि मथते समय अपना हाथ क्या हो रहा था, मथन में लगा हुआ था, कृष्ण के सभा में लगी हुई थी और अब इसको माता का आंख जो है हमेशा नजर अंदर की तरफ रहता था कि किस समय लाला उठ जाएगा, चिल्लाने लगेगा, नजदीक नहीं हूँ, पास में सोई नहीं हूँ, इधर उनका आंख था वो भी सेवा में था, हाथ भी सेवा में था और उस समय मन जो है भगवान की बाल लीलाओं का चिंतन कर रहा था और भगवान की बाल लीलाओं का चिंतन करते समय अपने मुख के द्वारा कीर्तन भी कर रही थी माता यशोदा। किस प्रकार के चिंतन, यानी यानी च गीतानि तद बाल चरितानि च, भगवान की बाल लीलाओं की चरित्रों को गान कर रही थी। और ये हम लोगों को पता होना चाहिए कि आध्यात्मिक जगत में जो कोई व्यक्ति कुछ भी बोलता है वो ऐसा हमारे जैसा रूक्ष यानी कर्कश स्वर से कथा ये बोलना नहीं होता है, वो मधुर गान होता है। इस आध्यात्मिक जगत में जो भी व्यक्ति चल के चला जाता है तो वो चलने जैसा नहीं दिखता है, वो नाट्य हुआ करता है, जैसे कि डांस, कोई डांस कर रहा है, उनका चलना भी नाट्य है और वहां का बोलना भी गाना है, गीत है, संगीत है। तो अतः इस यशोदा मैया ने भगवान की बाल लीलाओं के चरित्रों को गान कर रही थी। बाल लीलाओं के चरित्रों में क्या आता है, कितना 6 दिन या 7 दिन के बच्चे थे, पूतना का वध कर दिए थे, उसके थोड़ी दिन के बाद शकटासुर का मारे थे, शकट पलट दिए थे, तृणाव्रत का किए थे और माँ के गोद में रहते हुए पहाड़ जैसा भारी हो गए थे तृणाव्रत वध से पहले। ये सब चरित्रों को, इस सब लीलाओं को मैया यशोदा ने स्मरण करते करते उसको गीत बनाकर गा रही थी, गीत बनाकर। अगर कोई व्यक्ति इस भौतिक संसार में भी अगर कोई व्यक्ति किसी से ज्यादा प्यार करता है तो ये जो फिल्मी गाना होता है उसको उसके नाम पे उसको कन्वर्ट करके उसको गाने लगता है, उसको याद करने के लिए बार बार बार। व्यक्ति अगर किसी को ज्यादा चाहता है, ज्यादा स्नेह करता है तो उसको हमेशा अपने मुख में रखना चाहता है और ऐसा उसके बारे में तो बोलेगा नहीं, उसका नाम नहीं लगा, ऐसे गाना जैसा संगीत जैसा बनाकर उसको प्रस्तुत करने लगा और अपने से गाते रहेगा घर में, बाथरूम में इत्यादि। क्योंकि यशोदा मैया कृष्ण से, कृष्ण की वात्सल्य प्रेम से इतना निमग्न थी, अतः इसीलिए मैया ने हर समय भगवान कृष्ण की लीलाओं और चरित्रों का गान श्रवण और लीलाओं का स्मरण इत्यादि कर रही थी। किस प्रकार की लीला है और ये गोपियां किस प्रकार की बातों को लेके उल्हाना कर रही थी, इसके बारे में अष्टम अध्याय में बहुत अच्छी तरह से सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुनाते हैं। सुखदेव गोस्वामी कि जैसे ही भगवान का नामकरण संस्करण हो गया गर्ग मुनि के द्वारा, उस समय कहते हैं दोनों लड़के यानी दोनों बच्चे क्या करने लगे, अपने हाथों से और अपने पैरों के बल से रेंगने लगे। रेंगने का मतलब समझते हैं ना, छाती को भी घसीटना, हाथ और पैर को ऐसा खींचते हुए, जमीन को पकड़कर खींचते हुए आगे बढ़ना, उसको कहते हैं रेंगना। तो दोनों क्या किए, हाथ और पैरों के बल पर वो रेंगने लगे। और कहाँ रेंगते थे उसके बारे में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, कालेन व्रजतापलेन गोकुले राम केशव जानु ಭ್ಯಾಂ ಸಹ ಪಾಣಿಭ್ಯಾಂ ರಿಂಗಮಾಣೋ ಬ್ರಜ ಹಳತು. ಕಾಲೇನ ಬ್ರಜತಾಪ್ಲೇನ ಗೋಕುಲೆ ರಾಮ ಕೇಶವೋ. ಗೋಕುಲ್ ಮೇ ರಾಮ ಯಾನಿ ಬಲರಾಮ್ ಸ್ವಯಂ ಔರ್ ಭಗವಾನ್ ದೋನೋ ಕುಛ್ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಾದ್ ಯಾನಿ ನಾಮಕರಣ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕುಛ್ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಾದ್ ಜಾನುಭ್ಯಾಮ್ ಸಹ ಪಾಣಿಭ್ಯಾಮ್. ಜಾನುಭ್ಯಾಮ್ ಅಪ್ನೆ ಪೇರೋ ಸೆ ಪಾಣಿಭ್ಯಾಮ್ ಕಹತೆ ಹಾತ್ ಕಾ ಏಕ ನಾಮ ಪಾಣಿ ಭೀ ಕಹತೆ ಹೈ ಪಾಣಿ ಭೀ ಕಹತೆ ಪಾಣಿ. ಜಾನುಭ್ಯಾಮ್ ಸಹ ಪಾಣಿಭ್ಯಾಮ್ ಯಾನಿ ಅಪ್ನೆ ಹಾತ್ ಔರ್ ಪೇರ್ ಕೆ ಬಲ್ ಪೆ ರಿಂಗ ಮಾಣೋ ಬ್ರಿಜ ಹತು. ಓ ರಿಂಗ ಮಾಣೋ ರೇಂಗತೆ ಹುವೆ ಖಿಲ್ವಾಡ ಕರ್ನೆ ಲಗೆ. ಕೇವಲ ರೇಂಗನಾ ನಹಿ, ಕೇವಲ ರೇಂಗತೆ ರೇಂಗತೆ ಏಕ ಜಗಾ ಜಾ ರಹೆ ಥೆ ವೋ ಬಾತ್ ನಹಿ, ರೇಂಗತೆ ಹುವೆ ಖಿಲ್ವಾಡ ಕರ್ ರಹೆ ಥೆ. ಇಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಕಿಲ್ನಾ ಔರ್ ಕಹಾ ರೇಂಗತೆ ಥೆ ವೋ ಕಹತೆ ಹೈ ತಾವಂಗ್ರಿ ಜುಗ್ಮ ಮನ ಕೃ ಸರಿಸ್ಪೃತ ಸರಿಸ್ಪೃತಂ ಘೋಷ ಪ್ರಘೋಷ ರುಚಿರಂ ರಜ ಕರ್ದಮೇಶು ತನ್ನಾದ ಹೃಷ್ಟ ಮನಸಾ ಬನಸೃತ್ಯ ಲೋಕಂ ಮುಗ್ಧ ಪ್ರಭಿ ವಧುಪೇಯ ತುರಂತಿ ಮಾತ್ರೌ ತಾವಂಗ್ ಗ್ರಿಂ ಯುಗ್ಮ ಮನಸ್ಕೃಶ್ಯ ಸರಿಸೃಪಂತೌ. ಕಿಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಖೇಲ್ ರೇ ಥೆ ಅಂಗ್ರಿ ಯುಗ್ಮ ಅನುಕೃಷ್ಣ ಅಪ್ನೆ ದೋನೋ ಪಾವೋ ಕೋ ಘಸೀಟ್ತೆ ಹುವೆ. ಹಾತ್ ಕೆ ಬಲ್ ಪರ್ ಇಸ್ ಜಮೀನ್ ಕೋ ಖೀಚ್ತೆ ಥೆ ಔರ್ ಪೇರೋ ಕೋ ಘಸೀಟ್ತೆ ಥೆ. ಉಸ್ಕೋ ಕಹತಾ ಹೈ ರೇಂಗ್ನಾ, ಉಸ್ಕೋ ಕಹಾ ಜಾತಾ ಹೈ ರೇಂಗ್ನಾ. ಔರ್ ಉಸ್ಕೋ ಸರಿಸೃಪಂತೌ, ಸರಿಸೃಪಂತೌ ಕಾ ಅರ್ಥ ಹೋತಾ ಹೈ ಸರಿಸೃಪೋ ಕಿ ಜೈಸಾ. ಸರಿಸೃಪ ಕಾ ಅರ್ಥ ಕ್ಯಾ ಹೈ, ಜೋ ಪ್ರಾಣಿ ಅಪ್ನೆ ಪೇಟ್ ಔರ್ ಅಪ್ನೆ ಛಾತಿ ಕೆ ಬಲ್ ಪೆ ಚಲ್ತಾ ಹೈ. ಜೈಸೆ ಕಿ ಸಾಂಪ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಾಣಿ ಕ್ಯಾ ಕರ್ತೆ ಹೈ, ಸಾಂಪ್ ಕಾ ತೋ ಪೇರ್ ನಹಿ ಹೈ. ಔರ್ ಕುಚ್ ಐಸೆ ಭಿ ಪ್ರಾಣಿ ಹೈ ಉನ್ಕಾ ಪೇರ್ ಭಿ ಹೋತಾ ಹೈ, ಫಿರ್ ಭಿ ಓ ಲೋಗ ಅಪ್ನೆ ಛಾತಿ ಕೆ ಬಲ್ ಪರ್ ಪೇಟ್ ಕೆ ಬಲ್ ಪರ್ ಘಸೀಟ್ತೆ ಹುವೆ ಜಾತೆ ಹೈ. ಇಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಕಿ ಪ್ರಾಣಿಯೋ ಕಾ ಜೋ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಉನ್ಕೋ ಕಹತೆ ಹೈ ಸರೀಸೃಪ, ಸಾಂಪ್ ಇತ್ಯಾದಿ. ಔರ್ ಭಗವಾನ್ ರಾಮ್ ಔರ್ ಕೇಶವ್ ಕಿಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಸೆ ಚಲ್ ರಹೆ ಥೆ, ಸರೀಸೃಪಂತೌ ಸರೀಸೃಪೋ ಕಿ ಜೈಸಾ. ಮತ್ಲಬ್ ಸಾಂಪ್ ಯಾನಿ ಸಾಂಪ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಾಣಿಯೋ ಕಾ ಜೈಸಾ ರೇಂಗ್ತೆ ಥೆ, ಘಸೀಟ್ತೆ ಹುವೆ ಚಲ್ ರಹೆ ಥೆ, ಅಪ್ನೆ ಪೇರೋ ಕೋ ಘಸೀಟ್ತೆ ಹುವೆ ಆಗೇ ಚಲ್ತೆ ಥೆ. ಘೋಷಪ್ರ ಘೋಷ ರುಚಿರಂ ಬ್ರಜ ಕರ್ದಮೇಶು. ಓ ಘೋಷಪ್ರ ಘೋಷ ರುಚಿರಂ ಕಾ ಅರ್ಥ ಹೈ, ಪ್ರಭುಪಾದ ಲಿಖತೆ ಹೈ ಅಪ್ನೆ ಘುಂಗರೋ ಕಿ ಆವಾಜ್ ಕರ್ತೆ ಜೋ ಅತ್ಯಂತ ಮಧುರ ಥಿ. ಕ್ಯೂ ರೇಂಗ್ತೆ ಥೆ, ರೇಂಗ್ತೆ ರೇಂಗ್ತೆ ಬಹುತ್ ದೂರ ತಕ್ ಜಾತೆ ಥೆ, ಫಿರ್ ವಾಪಸ್ ಆತೆ ಥೆ, ಔರ್ ಜ್ಯಾದಾತರ್ ರೇಂಗ್ನೆ ಮೇ ಲಗೆ ಹುವೆ ಥೆ. ಕ್ಯೂ ರೇಂಗ್ತೆ ಥೆ ಕಿ ಪ್ರಭುಪಾದ ಜಿ ಕಹತೆ ಹೈ, ಯಾನಿ ಸುಖದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಕಾ ಕಹನಾ ಹೈ ಕಿ ಉನ್ ಮೈಯಾನೆ, ಮೈಯಾ ಯಶೋದಾನೆ ಉನ್ ದೋನೋ ಕಿ ಪೇರೋ ಮೇ ಘುಂಗರು ಪಹನಾ ದಿ ಥಿ. ತ ಸಮಸ್ಯೆ ಯೇ ಥಾ ಕಿ ಘುಂಗರು ಪಹನಾನೆ ಕೆ ವಜಹ ಸೆ ಉಸ್ ಘುಂಗರೋ ಕಾ ಆವಾಜ್ ಹುವಾ ಕರ್ತಾ ಥಾ. ಔರ್ ಜೈಸೆ ಥೋಡಾ ರಿಂಗ್ತೆ ಥೆ ತೋ ಘುಂಗರೋ ಕಾ ಆವಾಜ್ ಹುವಾ ಕರ್ತಾ ಥಾ. ಔರ್ ಯೇ ಘುಂಗರೋ ಕಾ ಆವಾಜ್ ಇತ್ನಾ ಮಧುರ ಹುವಾ ಕರ್ತಾ ಥಾ ಕಿ ವೋ ಬಾರ್ ಬಾರ್ ಇಸ್ ಘುಂಗರು ಕಿ ಆವಾಜ್ ಕೋ ಸುನ್ನಾ ಚಾಹತೆ ಥೆ ವೋ ಲೋಗ್. ಇಸಿಲಿಯೆ ಔರ್ ಓ ಘಸೀಟ್ನೆ ಘಸೀಟ್ತೆ ಘಸೀಟ್ತೆ ಹುವೆ ಸರೀಸೃಪೋ ಕೆ ಜೈಸಾ ರೇಂಗ್ನೆ ಲಗತೆ ಥೆ, ಬಹುತ್ ದೂರ ತಕ್ ರೇಂಗ್ತೆ ಥೆ. ವಿಶ್ವನಾಥ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಠಾಕೂರ್ ಉನ್ಕೆ ಟೀಕಾ ಮೇ ಇಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಭಿ ಕಹತೆ ಹೈ ಔರ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಜಿ ಅನುವಾದ ಮೇ ಇಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಸೆ ಕಹತೆ ಹೈ ಕಿ ಅಗರ್ ಉನ್ಕೆ ಬಾಜು ಮೇ ಸೆ ಕೋಯಿ ಸ್ತ್ರೀ ಯಾನಿ ಕೋಯಿ ಗೋಪಿ ಅಗರ್ ನಿಕಲ್ ಗಹಿ ತೋ ಗೋಪಿಯಾ ಕ್ಯಾ ಕರ್ತೆ ಹೈ, ಪಾಂವ್ ಮೇ ಪಾಂಜಿ ಪಾಂಜಿ ನಿ ಕ್ಯಾ ಬೋಲ್ತೆ ಹೈ ಉಸ್ಕೋ ಹಿಂದಿ ಮೇ, ಪಾಯಲ್ ಪಾಯಲ್ ಪಹನೆ ಹುವೆ ರಹತೆ ಹೈ ತೋ ಉಸ್ಮೇ ಝುಮರು ಲಗಾ ಹುವಾ ರಹತಾ ಹೈ ಘುಂಗರು, ಔರ್ ಉಸ್ಕಾ ಆವಾಜ್ ಬಹುತ್ ಮಧುರ ಹೋತಾ ಹೈ. ಅಗರ್ ಕೋಯಿ ಗೋಪಿ ಕೋಯಿ ಅಗರ್ ಉನ್ಕೆ ಬಾಜು ಸೆ ನಿಕಲ್ ಗಹಿ ಹೋ, ಅಗರ್ ನಿಕಲ್ ಗಹಿ ತೋ ಉನ್ಕಾ ಘುಂಗರು ಕಾ ಆವಾಜ್ ಸುನಾಯಿ ಪಡ್ತಾ ಹೈ, ಕಾನ್ ಮೇ ಪ್ರವೇಶ ಕರ್ತಾ ಹೈ. ತೋ ಜೈಸೆ ಕಿ ಮಾನ್ ಲೀಜಿಯೇ ಮೃಗ ಮೃಗ ಜೊ ಹೋತಾ ಹೈ ಓ ಕಹೀ ಪೆ ಅಕೇಲೆ ಮೇ ರಹತಾ ಹೈ, ಬನ್ಸಿ ಧ್ವನಿ ಅಗರ್ ಉಸ್ಕೋ ಸುನಾಯಿ ಪಡ್ ಜಾಯೆಗಾ ನಾ ಉಸ್ಕಾ ಕಾನ್ ಅಗರ್ ಐಸಾ ರಹೆಗಾ ತೋ ಐಸೆ ಖಡಾ ಖಡಾ ಕರ್ ದೇಗಾ. ತೋ ಯೇ ದೋನೋ ಭಿ ಐಸಾ ಹುವಾ ಕರ್ತೆ ಥೆ, ಕಹೀ ಪೆ ರಹತೆ ಥೆ ಔರ್ ಜೈಸೆ ಹಿ ಘುಂಗರುವೋ ಕಾ ಆವಾಜ್ ಇನ್ಕೆ ಕಾನ್ ಮೇ ಪಹುಂಚ ಜಾತಾ ಥಾ ತೋ ಕಾನ್ ಖಡಾ ಖಡಾ ಕರ್ಕೆ ಇಧರ್ ಉಧರ್ ದೇಖ್ತೆ ಥೆ. ಔರ್ ವೋ ಜಾ ರಹಿ ಹೈ ಉಸ್ಕೆ ವಹಾಂ ಸೆ ಯೇ ಆವಾಜ್ ಆ ರಹಾ ಹೈ ತೋ ಯೇ ಘಸೀಟ್ತೆ ಹುವೆ ಉನ್ಕೆ ಪೀಚೆ ಜಾನೆ ಲಗ್ತೆ ಥೆ. ಕುಚ್ ದೇರ್ ಜಾನೆ ಕೆ ಬಾದ್ ಕ್ಯಾ ಹೋತಾ ಥಾ ಕಿ ವೋ ಜೋ ಗೋಪಿ ಥಿ ವೋ ಜೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಥಿ ವೋ ಮುಡ್ಕರ್ ದೇಖ್ತಿ ಥಿ, ಅರೆ ಯೇ ದೋನೋ ಘಸೀಟ್ತೆ ಹುವೆ ಚಲ್ನೆ ಲಗ್ ಗಯಿ, ಅಭಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಹೋತೆ ಥೆ. ಯೇ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಹೈ, ಯೇ ಬಚ್ಚೋ ಕೆ ಪ್ರತಿ ಪ್ರೇಮ್ ಬಚ್ಚೋ ಕೆ ಪ್ರತಿ ಜೋ ಸ್ನೇಹ ಹೈ ಯೇ ಹರೇಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೆ ಅಂದರ್ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಹೋತಾ ಹೈ. ಔರ್ ಖಾಸ್ ಕರ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಕೆ ಪ್ರತಿ ಸ್ನೇಹ, ಯಹಿ ತೋ ಜೀವ ಕಾ ಲಕ್ಷ್ಯ ಹೈ ಔರ್ ಯಹಿ ತೋ ಹಮಾರ ಸಿದ್ಧಿ ಹೈ ಔರ್ ಕ್ಯಾ ಕಹತೆ ಯಹಿ ಹಮಾರ ಸ್ವರೂಪ ಹೈ. ಕೃಷ್ಣರ ಸ್ವರೂಪ ಹೈ ಕ್ಯಾ ಹೈ ವೋ ಶ್ಲೋಕ, ಜೀವರ ಸ್ವರೂಪ ಹೈ ಕೃಷ್ಣರ ನಿತ್ಯ ದಾಸ. ಜೀವ ತೋ ಹಮೇಶಾ ಕೆ ಲಿಯೇ ಕೃಷ್ಣ ಕಾ ದಾಸ ಹೈ, ವೋ ಸ್ವಾಮಿ ಹೈ. ಅಗರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಜಾ ರಹಾ ಹೈ ತೋ ಜೀವ ಹಮೇಶಾ ಸ್ವಾಮಿ ಕೆ कार्यकलापों को देख के आश्चर्य प्रकट करेगा ही और स्नेह करेगा ही। तो जैसे ही गोपियां मुड़कर देखती थी कि ये घसीटते हुए उनकी तरफ आ रही है और वो देख के हंसने लगती थी, अरे ये लाला अभी घसीटने लग गया है, रेंगते हुए चलना लग गया है, देखो देखो कैसे चल रहा है। और सभी लोग इकट्ठा हो जाते थे और सभी लोग आश्चर्य होकर देखते थे। तो दोनों बच्चे क्या करते थे, बड़े बड़े आंखों से उन गोपियों को देखते थे और देख के बहुत डर जाते थे। क्यों? वो सोचते थे ये जो गोपी है ये मेरा मैया है, ये जा रही है, इसीलिए उनके पीछे भाग रहे थे। और भागते भागते देखे, मुड़ के जब भी देखे थे, ये मैया नहीं है, ये तो दूसरा कहीं। हाँ हो सकता है उस समय मैया करके शब्द नहीं बोले हैं, मगर इतना तो मालूम था ना कि ये जो है ना यही मेरे को गोद में लेती है, दूध पिलाती है, ऐसा सोचे होंगे, अतः उनके पीछे भागने लगे। तो यह देखकर जैसे ये गोपियां मुड़कर देख रही थी तो दोनों क्या करते थे, डर जाते थे और डर के मारे तुरंत ही वहां से वापस आते थे। वो रेंगते हुए रेंगते हुए कहां रेंगते थे, घोषापुर घोष रुचिरंग ब्रज करदमेशो, ब्रज की करदम में, ब्रज की जो करदम, करदम समझते हैं ना, कीचड़, कीचड़ में रेंगते थे। कैसा कीचड़ है, अपने टीका में भक्ति विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं ये जो कीचड़ है ये कोई दूसरा कीचड़ नहीं, गायों का गोबर और गोमूत्र और ब्रज की मिट्टी, ये तीन की मिलाप से जो कीचड़ बना है वो कीचड़, ये कीचड़ में रेंगते थे। इसीलिए उनके शरीर में कोई दाग इत्यादि, कोई खरोच इत्यादि नहीं आता था, कीचड़ में रेंगते थे। और कीचड़ में रेंगते हुए भी रुचिरम, बहुत ही सुंदर दिखते थे वो, पूरे शरीर में कीचड़ भर जाता था, काला काला कीचड़, गोबर, गोमूत्र इत्यादि मिला हुआ कीचड़ शरीर में भर जाता था, फिर भी वो रुचिरम सुंदर दिखते थे, रुचिर दिखते थे। ब्रज करदमेशु, ब्रज करदम में रेंगते थे। तरनाद हृष्ट मनसा नृत्य लोकम मुग्ध प्रवीत वपुतेय तुरंति मात्रो, तरनाद उन घुंघरों की आवाज से अत्यंत प्रसन्न होकर उनके पीछे जा रहे थे, मगर जैसे ही उनको पता लगता था कि ये जो व्यक्ति है, ये जो माता है, यानी ये जो स्त्री जा रही है, ये मेरा मैया नहीं है, तो तुरंत प्रभीतवत यानी भयभीत होकर उनसे बारंबार डरते हुए, प्रभुपाद लिखते हैं कि उनसे बारंबार डरते हुए, प्रभीतवत यानी डरते हुए वापस लौटते थे, वापस आ जाते थे। और कहाँ वापस आते थे, सीधे अपने मैया के पास, करदम में लोटपोट होकर, पूरा शरीर में मिट्टी, कीचड़, गोबर, ये गोमूत्र इत्यादि लगा हुआ रहता था शरीर में, मुंह में, और दोनों रेंगते रेंगते, हो सकता है लाला का ज्यादा करदम नहीं दिखता होगा क्योंकि लाला खुद ही सांवला है, मगर राम के शरीर से तो झटक के दिख रहा था कि करदम लगा हुआ है करके। और दोनों करदम में डूबे हुए वापस आके सीधा अपने मैया के पास जाते, कहां जाते थे, मात्रो अपने मैयाओं के पास जाते थे। फिर आगे कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, तन मातरो निज सुत घृणिया स्नुवंत पंकांग राग रुचिरा बपगृह दोर्भ्याम दत्वा स्तनंग प्रभवित स्मसुख निरक्ष्य मुग्ध स्मिताप्ल दसनम यजुत प्रमोदम। तन मातरो निज सुत घृणिया स्नुवंत पंकांग राग रुचिरा बपगृह दोर्भ्याम। जैसे ही अपने शरीर में ये पंक रूपक अंग राग लगाकर दोनों वापस आ रहे थे, सुखदेव गोस्वामी का कहना है ये जो इनके शरीर में कीचड़ लगा है ये अंग राग जैसा है। अंग राग का अर्थ होता है अंग में अर्थात शरीर में, राग अर्थात लेप, लेप शरीर में, लेप क्या, शरीर के लेप क्या होता है, जैसे कि हल्दी लेप देते हैं शरीर में, चंदन का लेप देते हैं शरीर में, अंग राग उसको कहते हैं। ये अंग राग शब्द सुने होंगे, जिस समय भगवान मथुरा में प्रवेश कर रहे थे, मथुरा का नगरी में घूम रहे थे, उस समय कंस का अंगराग लगाने के लिए कुब्जा जो है अंगराग लेके जा रही थी, उस समय भगवान को देखकर ये अंगराग संपूर्ण रूप से भगवान को लगा दी थी। अंगराग, अंगराग का अर्थ था शरीर में लेप देने वाले वस्तु, राग जैसे कि हल्दी हो गया, वो चंदन हुआ हो। तो ये कैसा दिख रहा था, अंगराग, किस चीज का अंगराग था, हल्दी का नहीं, चंदन का नहीं, पंख का, पंख कलुषित माना जाता है। कभी कभी ये पंख शब्द पाप को भी सूचित करता है, कीचड़ को सूचित करता है। ये कीचड़ रूपक अंगराग भगवान राम और कृष्ण के केशव के शरीर में लगा हुआ रहता था। पंकांग रुचिरो, ये पंक अंग राग लगे रहने पर भी रुचिरो अत्यंत रुचिर लग रहे थे, सुंदर लग रहे थे। ऐसा नहीं अगर कोई व्यक्ति कीचड़ में लोटपोट होके आ गया वो हमको बहुत सुंदर दिखेगा, वो उसको देख के घृणा करके सब लोग भाग जाएंगे। मगर भगवान जैसे ही उनके शरीर में कीचड़ लगा और आए, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि रुचिरो बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहे थे, अत्यंत सुंदर दिख रहे थे, जैसे कि ये पंख लाग अंग अंगराग जो है उनको सुंदरता को बढ़ाता है, इस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं। तो अंगराग पंख रूपक अंगराग को लोटपोट होके ताबड़तोड़ अपने मैयाओं के पास वापस आते थे। अपने मैयाओं के पास जैसे ही आते थे, तन मातरो उनके मैयाओं ने निज सुतो अपने पुत्रों को क्या करते थे, दोर्भ्याम अपने हाथों से भुजाओं से उठा लेते थे। कौन उठा लेते थे, तन मातरो उनके माताओं ने। माताओं ने मतलब यहां पे कौन है, राम और केशव दो ही जन है, और उनके माता कौन है, यशोदा मैया और रोहिणी मैया, ये दोनों। मातरो शब्द रोहिणी मैया और यशोदा मैया को सूचित करता है। निज सुतो का अर्थ होता है उनके दो पुत्र राम और केशव, और इस भाव को प्रकट करता है कृष्णपाद महाराज कि निज सुतो का अर्थ यह नहीं है कि कृष्ण यशोदा के पास जाता था और बलराम जो है रोहिणी मैया के पास जाते थे। अगर ऐसा बताना होता तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि निज सुतो, यहाँ पे निज सुतो नहीं कहे, निज सुतो कहे। निज सुतो का मतलब भाव प्रकट करते कहते हैं कि को अपने पुत्रों को उठा लेते थे। रोहिणी मैया कभी कभी कान्हा को भी उठा लेती थी और यशोदा मैया कभी कभी बलदेव को भी उठा लेती थी। वो ये नहीं देखती कि ये कान्हा है मेरा पुत्र है, ये रोहिणी का पुत्र है उसके पास जाएगा, नहीं। सामने जो आया स्नेह के कारण, पुत्र स्नेह के कारण उनको उठा लेते थे, और इतने स्नेह से इतने प्रेम से उठाते थे कि उनको ये भ्रुक्षेप भी नहीं होता था, कि उनको ये लगता भी नहीं था कि बच्चों के शरीर में पंख लगा हुआ है, कीचड़ लगा हुआ है, इनको साफ किया जाए, ना ऐसा नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ था। तुरंत बच्चों को देखने मात्र से ही अर्भक वत्सलता, यानी अर्भक वत्सल मतलब पुत्र स्नेह, संतान के प्रति स्नेह उत्पन्न होता था और उनको उठा लेते थे अपने गोद में उठा के उनको लालन करते हुए अपना स्तनों का पान कराते थे, उस बात को प्रचुर करते। दत्वा स्तनंग प्रपिवतो स्मसुख निरीक्ष, दत्वा यानी देकर, दत्वा का अर्थ होता है देकर, क्या देकर, स्तनम दत्वा अपने स्तनों को देकर। कहां पे स्तनों को देते हैं, अपने अपने पुत्रों को मुख में। दत्वा स्तनंग प्रपिवतो पीते समय अपने अपने स्तनों को बच्चों के मुंह में दिए, और बच्चे जिस समय अपने स्तन पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं, उस समय मुखम निरीक्ष, माताएं क्या कर रहे हैं, बच्चों की मुख का निरीक्षण कर रहे हैं। निरीक्षण का अर्थ होता है देखना, निरीक्षण का अर्थ होता है देखना, मुखम निरीक्ष। किस प्रकार से निरीक्षण कर रहे हैं, या इस प्रकार के निरीक्षण करने से क्या होता है, क्या हो रहा है, मुग्ध स्मिता अल्प दशनम यजुतु प्रमोदम। बच्चों का दूध पीते समय माताओं ने अपने अपने पुत्रों के मुख को देखकर अत्यंत आनंद का अनुभव कर रहे हैं, प्रमोदम, मोद आनंद, प्रमोदम प्रकृष्ट रूप से मोद, प्रमोदम का अर्थ होता है संपूर्ण रूप से आनंद का अनुभव कर रहे हैं। और कैसा उठाते थे बच्चों को, कैसा दूध पिलाते थे, कि सुखदेव गोस्वामी कहते घृणिया घृणिया स्नुवंत्यो, स्नुवंत्य का अर्थ होता है अपना स्तन चूता हुआ दूध, यानी स्तनों से दूध उबरता हुआ। कभी कभी अगर माताओं पुत्र वत्सल यानी पुत्र प्रेम बहुत ही तीव्रता से होता है तो माताओं के स्तनों से दूध चूने लगता है, तो सुखदेव गोस्वामी का कहना है ये कौन सा दूध पिला है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी अपने अनुवाद में और टीका में भी लिखते हैं कि चूता हुआ दूध मतलब स्तनों से निकलता हुआ दूध, यानी पुत्र स्नेह से अपने आप से दूध निकल रहा था स्तन से, और उस प्रकार के दूध को पिलाने लगे। कैसा पिलाने लगे, घृणिया, घृणिया का अर्थ होता है अत्यंत प्रेम पूर्वक, अत्यंत प्रेम पूर्वक। ये घृणा शब्द संस्कृत में प्रेम के लिए यूज किया जाता है, मगर हम अगर हिंदी इत्यादि भाषाओं में घृणा शब्द किसके लिए, घृणा हाँ नफरत के लिए यूज किया जाता है, मगर संस्कृत में ये घृणा शब्द प्रेम पूर्वक, प्रभुपाद लिखते हैं कि अत्यंत प्रेम पूर्वक, अत्यंत प्रेम को घृण्या, ये शब्द व्यवहार किया जाता है संस्कृत भाषा में। माताओं ने अत्यंत प्रेम बस अपने स्तनों से चूता हुआ दूध को बच्चों को पिलाएं, बच्चों को दूध पिलाते समय उनके मुखों को निरीक्षण किए, मुखम निरीक्षण मुग्धम सीता अल्प दसनम, और उनके मुख में क्या देख रहे थे, मुग्धम स्मित अल्प दसनम, उनके मुखों को स्मित मुख, स्मित यानी मुस्कुराता हुआ मुख, मुस्कुराना मतलब जोर से हंसना नहीं, सारा दांत दिखाकर थोड़ा सा हंसना मुस्कुराना, अल्प दसनम कहते हैं वो, अल्प दसनम, दसनम का अर्थ होता है दांत और अल्प मतलब थोड़ा सा दिखा हुआ यानी थोड़ा दांत दिखता है, नहीं तो कभी कभी कोई आचार्य लिखते हैं कि अल्प दसनम का अर्थ होता है थोड़ा दांत निकला हुआ है, जैसे कि बच्चों का दो तीन दांत ही सामने आया हुआ रहता है और दूध पीते समय दांत दिखता है और ये दांत देख के हंस रहे थे दांत दिखा दिखा कर मैया को देख कर, तो इस प्रकार की चेहरा को इस प्रकार के मुख का निरीक्षण करते हुए माता यशोदा और रोहिणी ने अपने अपने पुत्रों को देखकर बहुत ही प्रमोद बहुत ही आनंद का अनुभव करते थे, इस प्रकार से भगवान लीला करते थे। आगे कहते हैं यह हर अंग नाद नाद असनी कुमार लीला अंतर ब्रजे तद्बाला प्रगृहित पुच्छे वश्चे रिस्तत उभाव नुकृष्यमाणो प्रक्षंत उज्जित गृह्या जजुहृस्य शंतो। ते कहते हैं कि इनका जो लीलाएं हैं नंद बाबाओं के आंगन में और नंद बाबाओं के घर के आजू बाजू में हुआ करता था और ये केवल अंगनाओं का दर्शनीय हुआ करता था। अंगनाओं का मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं खास करके ज्यादातर पुरुषों के पास नहीं जाते हैं, स्त्रियों के पास ज्यादातर रहने के लिए रहते हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अंगना दर्शनीय, अंगना दर्शनीय का अर्थ होता है स्त्रियों के द्वारा दर्शनीय, स्त्रियों के द्वारा देखने योग्य, यानी स्त्रियां इस प्रकार की लीलाओं को ज्यादातर देखती थी, ये घसीटते हुए जाना मिट्टी में करदम में देख के हंसती थी वही लोग, ज्यादातर गोप लोग नहीं। मगर अभी जो कथा बता रहे ये बहुत रुचिर है, क्या करते थे कभी कभी ये दोनों, ये इस प्रकार की पंख में रहते हुए कभी कभी घसीटते घसीटते जाते थे, दिन में तो गैया चरने के लिए चले जाते थे वन में, उस समय जब बछड़े हुआ करते थे वो वहीं पर रहते थे और इधर उधर सोया हुआ रहते थे बछड़े, छोटे छोटे बछड़े गौओं के, और दोनों कभी कभी ज्यादातर जाके इन बछड़ों के पूछ को पकड़ लेते थे, दोनों बलराम बलदेव जी पकड़ लेते थे, ये लाला भी पकड़ लेते थे ये बछड़ों की पूछ को, और जैसे ही बछड़ों की पूछ को पकड़ लेते थे, बछड़ों का बछड़ा सोया हुआ है उसका पूछ को पकड़ेगा तो क्या करेगा बछड़ा, क्या उल्टी उसका चाटेगा, नहीं वो तो डर के मारे भागेगा ना, तो अतः जैसे ही बछड़े के पूछ को पकड़ लेते थे बछड़ा घबरा कर उठ जाता था, और जैसे उठ जाता था तो ये दोनों डर जाते थे, अरे अभी क्या होगा, तो और जोर से पकड़ते थे बछड़े के पूछ को और जोर से पकड़ते थे कि वो बछड़ा डर के मारे तेज भागने लगता था और भागने लगता था, ये लोग सोचते थे कि अभी छोड़ देंगे तो कुछ हो जाएगा, तो छोड़ नहीं रहे थे, पकड़े हुए रहते और तेज पकड़ते थे वो बछड़े भागते थे, तो ये बछड़े अपने पूंछ के द्वारा भगवान को घसीटते हुए बहुत दूर तक ले जाते थे, तो घसीटते हुए लेते समय सारे गोपियां देखते थे और एक दूसरे को जुटा देते, कोई आश्चर्यजनक चीजें देखेंगे तो सभी लोग बोलेंगे सखी सखी इधर आ देखो क्या हो रहा है, कहते हैं ऐसा, हम लोग भी कहते हैं, तभी वो गोपियां अपने अपने सखियों को बुलाते थे और दिखाते थे देखो ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, और देखकर हंसते थे, बछड़ों के पूछ को पकड़ लेते थे दोनों, पकड़ ठीक है पकड़ा मगर वो उठा घसीट रहा तो छोड़ देना चाहिए ना, तो छोड़ते नहीं थे, डर के मारे जोर से पकड़ते थे, मानो कि बछड़ा छोड़ देने से ही उनको खतरा है, इतने नादान थे कि यानी अपना बाल लीला में इस प्रकार के बाल लीला कर रहे थे कि इतना नादान बालक थे बच्चे थे कि उनको ये भी मालूम था कि अभी मेरे को ये बछड़ा घसीटते हुए ले जा रहा है, मेरा पैर हाथ पैर सब लग जाएगा, छोड़ देना चाहिए, छोड़ दूंगा तो मैं सुरक्षित रहूंगा, ये समझ में नहीं आ रहा था, वो सोचते थे कि मैं तो और भी संकट में आ जाऊंगा अगर छोड़ दूंगा तो हाथ, और तो वो दबा के पकड़ लेते थे और वो घसीटते हुए ले जा रहे थे, इस प्रकार की लीला बारम्बार करते थे। इस लीलाओं को आचार्य ने कोई कोई भक्तों ने बहुत अच्छा सा भाव कहते हैं, एक भक्त कहते हैं कि भगवान यहाँ पे यह कह रहे हैं कि कुछ लोग सोचते हैं कि भगवान तो अदक्षज है, अदक्षज का अर्थ होता है अब जो इंद्रियों से प्राप्त नहीं होते, इंद्रियों से परे हैं, अदक्षज का अर्थ भगवान इस प्रकार की लीला से कहते हैं कि मेरे मुझको इंद्रियों से भी प्राप्त कर सकते हो। इसका अर्थ क्या है, क्योंकि ये जो गया है इनको गो कहते हैं, गो कहते हैं ना, तो इंद्रियों को भी गो कहते हैं। गो का मतलब इंद्रिया। जो गोस्वामी शब्द है ये गो शब्द से आया है। गोस्वामी का अर्थ होता है अपने इंद्रियों के ऊपर जो स्वामित्व को हासिल किया है, अपने इंद्रियों को जिसने कंट्रोल में रखा है, अपने अधीन में रखा है, उसको कहते हैं स्वामी, गोस्वामी। तो गो का अर्थ होता है इंद्रिया, और गो का अर्थ क्या होता है, गैया। तो यहां पे लाला को कौन घसीटते हुए लेके जा रहा है, गौवे। तो गौवे घसीटते हुए लेके जा रहा है, इसका अर्थ है आचार्य लोग कहते हैं कि इंद्रियां अपने पूछ से भगवान को घसीटते हुए लेके जा रहे हैं। यानी भगवान इस लीला को प्रकट करा रहे हैं कि कह रहे हैं कि ये मत सोचिए कि मैं अधोक्षज हूं, ये भौतिक इंद्रियों से मेरे को प्राप्त नहीं किया जा सकता, यह नहीं है, इस इंद्रियों के द्वारा भी मेरे को प्राप्त कर किया जा सकता है। इस लीला से ये प्रकट कराते हैं कि मैं, मगर यह नहीं सोच लेना चाहिए कि हम हमारे भौतिक इंद्रियों के द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे। ये लीला क्या है, ये गौवे अपने पूंछ के द्वारा बांध कर लेके नहीं जा रहे हैं, भगवान ने पूंछ को पकड़ लिए हैं, मतलब भगवान ने इंद्रियों को पकड़ा हुआ है और भगवान खुद पकड़े हैं, इसीलिए घसीटते हुए ले रहे हैं। इसका अर्थ यह निकलता है कि हमारे इंद्रियां भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, सक्षम नहीं हो सकते। अगर भगवान स्वयं अपने इंद्रियों में बस में आ जाए तब क्या होगा, भगवान स्वयं कृपा बस अगर हमारे इंद्रियों में आ जाए। जब हरिनाम का जप किया जाता है तभी कोई कोई लोग तो ऐसे कहते हैं, अरे भगवान का दिव्य नाम को मुंह से कैसा बोल सकता है, झूठा हो जाएगा ये। मैं एक बार सुना तो 4 दिन पहले ही एक जन इधर आ रहे थे, कोई कहीं के थे, उड़ीसा गए या कहीं के, वो कह रहे थे कि नहीं नाम जब तो ऐसे मन में करना चाहिए, बाहर नहीं, ये तो नाम झूठा हो जाएगा। हाँ ये शुद्ध है, भगवान का नाम इतना विशुद्ध है, ये झूठा हो जाएगा, मुंह से बाहर आएगा तो झूठा हो जाएगा, ऐसा कहते हैं। और कभी कभी कोई सोचते हैं कि हमारा तो जीवा जो है ये भौतिक है, और इस भौतिक इंद्रिया किस प्रकार से आध्यात्मिक नाम को या भगवान को ग्रहण कर सकता है या उच्चारण कर सकता है, कभी कभी इस प्रकार का शंकाएं आता होता है। क्यों, क्योंकि भगवान के नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्वम नाम नामिन। नाम और नामी में अभिन्न है, भिन्न नहीं है। अगर भगवान में, भगवान के नाम में भिन्न नहीं है, तो इसका अर्थ क्या है, हमारा जीवा नाम उच्चारण कर रहा है, इसका अर्थ है भगवान स्वयं हमारे जीवा में प्रकट हो रहे हैं, इसका अर्थ यह है। अगर हमारा जीवा का हम भौतिक सोचे तो भगवान कैसे भौतिक वस्तु में आएंगे, हमारे जीवा के द्वारा भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। मगर हमारे प्रयास के द्वारा अगर भगवान कृपा करके हमारे जीवा के ऊपर आके बैठ जाए या नृत्य करने लगे, तब हम प्राप्त कर सकते हैं, यह अर्थ है। यहाँ पे भी यही लीला है, भगवान खुद गायों को पकड़े हैं, गो को पकड़ लिए हैं पूंछ को, और खुद पकड़े हैं इसलिए वो घसीटते हुए लेके जा रहा है। गो यानी इंद्रियां लेके नहीं जा सकता या पकड़ नहीं सकता है, मगर भगवान खुद पकड़ सकते हैं इंद्रियों को। इस प्रकार से कुछ भक्त लोग जो है इस प्रकार से भाव को व्यक्त करते हैं। तो गौवों के पूंछों को पकड़ते थे और घसीटते हुए जाते थे, तो उस समय सारे गोपियां जो है देखकर अत्यंत प्रसन्न होती थी लालाओं को इस प्रकार से घसीटते हुए देखकर। हाँ कोई सोच सकते हैं कि अगर घसीटते हुए ले रहा है तो लाला के बच्चों के शरीर में खरोच नहीं आता था। नहीं, खरोच नहीं आता था। क्यों खरोच नहीं आता था, क्योंकि ये लोग कहाँ रेंगते थे, ब्रज कर्दमेशु, ब्रज के कर्दम में, मतलब कीचड़ में। और किचन किससे बना था, मैं बताया था कि गोबर गोमूत्र और ब्रज की मिट्टी, और ये गोबर गोमूत्र के द्वारा ब्रज की मिट्टी जो है बहुत ही नरम और कोमल बन गई थी उस जगह पे जहां गैया रहा करते थे। और गैया कहां सोएंगे, वहीं गोबर और गोमूत्र छोड़ेंगे, और उनके द्वारा वो बार बार वो गौवा घूमने के द्वारा कीचड़ बन गया था, और कीचड़ बहुत कोमल होता है, और इस कीचड़ में खींचते हुए घसीटते हुए ले जा रहे थे गौवे, इसलिए उनके शरीर में कोई खरोच नहीं आता था। इस प्रकार की लीला को देखकर जो गोपियां थी, इसमें से कुछ गोपियां बहुत ही आश्चर्य प्रकट करती थी और कुछ गोपियां जो है बहुत ही आनंद विभोर होती थी देखकर इस प्रकार के भगवान की लीलाओं को। दो प्रकार के भाव क्यों हैं, क्योंकि जब आश्चर्य प्रेम इत्यादि में थे गोपियां, इस प्रकार की लीलाओं को देखकर बहुत ही आनंद हुआ करते थे, प्रमोद मिलता था उनको। मगर कुछ गोपियां थी उनको आश्चर्य हुआ करता था। क्यों आश्चर्य हुआ करता था? क्योंकि गोपियों में से चार प्रकार की गोपियां होते हैं। कुछ गोपियां हैं नित्य सिद्ध हुआ करते हैं, जो कि हमेशा भगवान के साथ उनके नित्य लीला में रहते हैं, और भगवान जब भी आते हैं उनके साथ साथ गोलोक वृंदावन से नित्य धाम से यहाँ पे लीला करने के आते हैं, उनको कहते हैं नित्य सिद्धा। और कुछ होते हैं जिस प्रकार भगवान ने आविर्भाव होते समय देवताओं को आदेश दिए थे कि अपने अपने पत्नियों को बोलिए कि वहाँ पे जाके गोकुल में जाके जन्म लेंगे, मेरे कार्य में मदद करेंगे। कुछ देव कन्याएं होते हैं, अपने स्वीकृति के द्वारा वो लोग गोपी बनते हैं। और कुछ होते हैं श्रुतियाँ। श्रुति का अर्थ होता है वेद। वेद का एक और नाम है, उसको कहते हैं श्रुति। श्रुति का अर्थ होता है जिसको श्रवण करके याद रखा जाता है, जिसको सुनकर याद रखा जाता है उसको कहते हैं श्रुति। तो कुछ श्रुतियाँ मतलब जो वेद होते हैं, यहाँ पर जो वेद हम किताब और पन्ने और ये अक्षर इत्यादि से देखते हैं, ये आध्यात्मिक जगत में अपना अपना स्वरूप हुआ करता है। तो ये श्रुतियाँ जो है, कुछ श्रुतियाँ गोपी बनी हुई हैं, और ये आश्चर्य प्रकट करने वाली गोपी जो थी ये श्रुतियाँ थी। क्योंकि ये सारा श्रुतियाँ मतलब सारा वेद, सारा शास्त्र में यही बताया गया कि भौतिक इंद्रियों के द्वारा कभी भी भगवान को बस में नहीं किया जा सकता, इंद्रियां कभी भी भगवान को बस में नहीं कर सकते, ये बताया गया। मगर ये इंद्रियां अभी भगवान को घसीटते हुए लेके जा रहे हैं, ये देखकर आश्चर्य हो रहे हैं श्रुतियां, क्योंकि श्रुतियां मतलब वेद है, उनका संपूर्ण ज्ञान है, और इन्होंने आज तक कभी इस प्रकार से परम ब्रह्म एक इंद्रियों के द्वारा बंद कर खींचे जा रहे हैं, ये कभी अपने शास्त्रों में या अपने श्रुतियों में अपने उसमें देखे नहीं ज्ञान में, तो ये कैसे हो सकता है? यह सोचकर कुछ गोपियां आश्चर्य प्रकट कर रही थी कि कैसे परम ब्रह्म को, श्रुतियों में ज़्यादातर परम ब्रह्म इस प्रकार के शब्द ये व्यवहार किया जाता है, किस प्रकार से परम ब्रह्म को इस प्रकार से गैया या गो यानी इंद्रियां घसीटते हुए ले जा सकते हैं। इसीलिए कुछ गोपियां बहुत ही आनंद ले रही थी, बहुत ही प्रमोद में थी, और कुछ गोपियां जो है आश्चर्य प्रकट करती थी, ये देखकर आश्चर्य हुआ करती थी। तो चार प्रकार की गोपियों में से नित्य सिद्धा, देव कन्याएं, श्रुतियां और कुछ तपस्वी थे। ये लोग तपस्या करते करते, ये तपस्या और ऋषियां जो है ये रामायण से कथा मिलता है जानकारी, जो भगवान रामचंद्र को देखकर कुछ तपस्वी जो है भगवान रामचंद्र को इस प्रकार से प्रेम में प्राप्त करना चाहते थे, कि रामचंद्र बोले भगवान रामचंद्र ने द्वापर युग में उनको इस प्रकार का स्नेह मिलेगा, इस प्रकार का भक्ति प्राप्त हो सकता है करके आशीर्वाद दिए थे, तो वो लोग सब गोपी बने थे। और एक किताब में पढ़ रहा था कि ये लोग कई कल्पों के बाद, ब्रह्मा जी के बहुत दिनों के बाद इन लोगों को भगवान की दिव्य लीला में, नित्य लीला में प्रविष्ट होने का मौका मिलता है। तो उसमें से कुछ श्रुतियां हैं, और ये श्रुतियां क्या करती थी? आश्चर्य प्रकट करती थी। तो इस प्रकार की दिव्य लीलाएं भगवान करते थे, और ये लीलाओं को, इस प्रकार की लीलाओं को माता ने याद करके गाना गा रही थी, गीत गा रही थी। दोनों बालकों और माता ने हमेशा बच्चों को सिंह वाले पशु, दांत वाले पशु, कुत्ता बिल्लियां इत्यादि, गौओं से बचाने के लिए प्रयास करते थे, बंदरों से, क्योंकि ये लोग के द्वारा ये लोग बच्चों को मालूम नहीं है, पकड़ लेंगे ना जाके कभी भी, और तो इन लोगों का दांत सिंह लग सकता है। माताओं ने अपना अपना गृह कार्यों को छोड़कर इसमें लगे हुए रहते थे, और दोनों भाइयों ने कुछ दिनों के बाद दोनों भाइयों ने अपने पैरों के बल पर चलना शुरू किए। ततस्तु भगवान कृष्ण वयस्य व्रज बालक ही सह रामो व्रज स्त्रीणाम चक्रीडे जन्मम मुदम। ततस्तु यानी उसके बाद भगवान कृष्ण वयस्य ब्रज बालकों का अर्थ होता है भगवान की वयस के समस्कंद, मतलब उनके दोस्त कौन होते हैं? जो कि हमारे एज के बराबर व्यक्ति होते हैं, यानी वयस्य ब्रज बालकों का अर्थ होता है ब्रज बालक जो कि भगवान की एज के यानी भगवान के वयस के बराबर थे उन लोगों के साथ। और सहरामो का अर्थ भगवान राम जी के सहित, राम कौन है? बलराम के सहित। यहां पे जो लीलाएं अभी शुरू हो रहा है ये दोनों मिलके कर रहे थे, मगर यहां पे जो लीला शुरू हो रहा है, प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य लिखते हैं कि अभी मेन जो हीरो है वो कृष्ण है, लिखे हैं इस दिव्य लीला में कृष्ण मुख्य नायक है, मुख्य नायक होता है मेन हीरो, नायक हीरो, और उनको साथ दे रहे हैं बलदेव। अभी जो लीलाएं करेंगे और ये मेन उसमें लीलाओं में प्रमुख भूमिका रहेगा भगवान कृष्ण का, और बलदेव जी जो है साथ देंगे। अभी तक जो लीला हुआ दोनों मिलके कर रहे थे इस प्रकार की लीला, क्योंकि अभी जो सारा लीलाएं आ रही है नटखटपन आ रहा है भगवान लीला का, भगवान कृष्ण का। जैसे ही पैरों से चलना शुरू कर दिए तब अपना उद्यम मचाना शुरू कर दिए दोनों। कृष्णस्य गोप्य रुचिरम वीक्ष्य कौमार चापलम सुनवंत्या कील तन्मात्रिति श्रीतु समागतः। कृष्ण की अति आकर्षक बाल सुलभ चंचलता को देखकर पड़ोसी की सारे गोपियां कृष्ण की क्रीड़ाओं और विषयों के बारे में बार बार सुनने के लिए माता यशोदा के पास पहुंचती है। देखिए ये श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम बहुत लोग इस प्रकार से सोचते हैं कि भगवान कृष्ण की ये जो नटखटपन है, इस लीलाएं हैं, ये सही नहीं है। माखन चोरी करना, किसी को छेड़ना, ये सब सही नहीं है। इसके द्वारा वो लोगों को परेशान करते थे और ये सारे गोपियाँ सारे स्त्रियाँ इसके द्वारा परेशान होकर माता के पास बार बार कंप्लेन करते थे। ये लोगों का सोचना है, ऐसा अभी भी कहते हैं लोग। मगर ये लीला बताने से पहले ही चेतावनी देते हैं सुखदेव गोस्वामी। इस श्लोक में कहते हैं कृष्णस्य गोप्यो रुचिरं वीक्ष्य कौमार चापलम। कृष्ण सारा गोपियों ने भगवान कृष्ण की इस चापलता यानी चपलता, भगवान कुमार जो चपलता लीला है उसको सुनोत्वा सुनने के लिए कीर्तन मात्रो हेचु होचु समागत। बार बार सुनने के लिए माता के पास जाके पहुंचे बताने के लिए, कंप्लेन करने नहीं गए। सुखदेव गोस्वामी ये नहीं कह रहे कि ये लोग सब कंप्लेन करने गए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अति आकर्षक सुलभ लीलाओं को गोपियों ने बार बार सुनने के लिए माता यशोदा के पास गए। माता यशोदा नहीं बताने वाली थी, यही लोग बताएंगे और यही लोग सुनेंगे। सभी लोग एकजुट हो जाते थे, मिल जाते थे, गोष्ठी बना के मैया के पास जाते थे। मैया तुम्हारा लड़का ने ये करता है, वो करता है, चुराता है, मारता और बंदरों को खिलाता है, मटका फोड़ देता है। एक व्यक्ति बोल रहा था तो दूसरा व्यक्ति उसको सुन रहा था, दूसरा गोपी उसको सुन रही थी। इस प्रकार से बार बार उन लीलाओं को सुनने के लिए मैया के पास जाते थे, ना कि उन्होंने कंप्लेन करने जाते थे कि लाला के बारे में कि तुम्हारा बच्चा हम लोग को परेशान करता है, उनको रोको, यह कहने के लिए नहीं। इसलिए उन्होंने पहले ही क्या करते हैं वो चेतावनी करते हैं। एक जगह एक ब्रज के एक बहुत अच्छे भक्त भी अपने कविताओं में लिखते हैं कि अपने निज निज ब्रजवासियों को सुखी करने के लिए ही भगवान कृष्ण ने गोकुल में पधारे हैं। एक भक्त लिखते हैं अपने कविता में, कविता इस प्रकार है, प्रथम करी हरि माखन चोरी ग्वालिन मन इच्छा करी पूजन आप भेज ब्रज खोरी। कि कहते हैं कि ये भगवान जो है ब्रज में जो आए हैं इस प्रकार से लीलाएं करते हैं, ये इन लोगों को परेशान करने के लिए नहीं, इन लोगों को प्रसन्न करने के लिए इसीलिए लीलाएं करते हैं। इस प्रकार विचार न आए इसलिए सुखदेव गोस्वामी पहले ही कहते हैं भगवान ने गोपियों को, ये गोपियां भगवान की लीलाओं को बार बार सुनने के लिए और सुनकर आनंद लूटने के लिए मैया के पास जाके कंप्लेन किया करते थे, उलाहना दिया करते थे। और ये उलाहना सुनकर बहुत परेशान होकर मैया ने दूध खुद से मक्खन बनाने लग गई थी। क्या उलाहना देते थे गोपियां, क्या कंप्लेन करते थे, बश्चान मुंचन कसिद समय कोश संजात हास स्तेयम साध्यथ ददिपय कल्पते स्तेय योग मर्कान भोक्षन विभजत सह चेत्रान भाण्ड भिन्नति द्रव्या लोभे गृह कृतोपि यातु क्रोश त्वकान बश्चान मुंच कश्चिद समय बश्चान मुंच बश्चान अर्थात है बच्चों को बछड़ों को मुंच मुंच का अर्थात है छोड़ो छोड़ देते थे ये मुंच शब्द इसी दसवें अध्याय के पहले स्कंद नहीं पुतना वध के समय भी आते थे। पुतना वध के समय एक श्लोक में सुखदेव गोस्वामी मुंच शब्द लिखते हैं कि जिस समय भगवान ने पुतना का स्तन पी रहे थे, जब भी पुतना को बहुत जोर से दर्द करने लगा तो पुतना ने चिल्लाने लगे मुंच मुंच रे मुंच मुंच का अर्थ होता है छोड़ रे छोड़ रे। तो यहाँ पे कहते हैं कि बश्चान मुंच ये दोनों क्या करते थे, खास करके ये लाला आपका बश्चान यानी बछड़ों को छोड़ देता था। क्या क्यों कभी छोड़ देता था, कश्चित समय, असमय पे छोड़ देता था वो। असमय, असमय का शब्द का अर्थ है, असमय का अर्थ है ये बछड़ा कभी खोला जाता है, जब भी गायों का दूध दुहा जाता है, दूध निकाला जाता है, उस समय थोड़ा दूध निकालने के बाद बच्चों को छोड़ा, बछड़ों को छोड़ा जाता है। ये जिनके पास गाय हैं, गवे हैं, वो मालूम रहेगा। तब जाके कुछ दूध प्राप्त हुआ, फिर बछड़ों को छोड़ते थे, बछड़े दूध पीते थे। अगर पहले बछड़ों को छोड़ दिया जाए तो बछड़े सारा दूध पी जाएंगे, बछड़े सारा दूध पी जाएंगे, और बछड़े दूध पी जाएंगे तो इन ग्वालों को कुछ दूध नहीं मिलेगा। तो ये लाला क्या करता था कि ये दूध दुहने से पहले ही बछड़ों को छोड़ दिया करता था, और छोड़ देने से ये बछड़े जाके सब दूध पी जाते थे तो ग्वालों को दूध नहीं मिलता था। ये परेशानी की कारण है। और क्या होता था, क्रोध संजात हास, अगर ये बछड़े छोड़ने पर कोई क्रोध करता था, कोई गुस्सा करता था उसके ऊपर, तो गुस्सा करने से, डांटने से, चिल्लाने से वो दांत दिखाने लगते थे। संजात हस, हास हास करते थे, हंसना हंसने लगते थे। डांटने से कोई व्यक्ति हंस रहा है, उसको क्या जवाब देगा कोई, उसका डांट धीमा पड़ जाएगा, उसका जो क्रोध है वो शांत हो जाएगा। क्रोध संजात हास, बछड़े छोड़ देते थे, छोड़ने पर अगर गुस्से से अगर डांटते थे तो क्रोध संजात हास, बछड़े छोड़ देते थे, परेशानी करते थे। इस प्रकार से गोपियां जब बोले, हो सकता है माता यशोदा ने बोली होगी कि तुम लोग उसको डांटते क्यों नहीं हो, अरे मैया, अरे रानी जी क्या बताएं, आपके लाला को अगर गुस्से से डांटे भी ना वो तो मुस्कुराने लगता है, और मुस्कुराने लगता है तो हम लोगों का ये जो गुस्सा है वो ठंडा हो जाता है, तो क्या डांटे हम आपके लाला को, ऐसा नाटक किया करते थे। और कभी कभी क्या होता था, अगर बछड़ों को छोड़ने पर कभी कभी उन लोग पकड़ लेते थे काना को, वो पकड़ में आ जाते थे, और कभी पकड़ में आ जाएंगे ना तो गोपी पकड़ लेती थी, क्यों क्यों छोड़ा तूने बछड़ों को, क्यों छोड़ा, तो क्या जवाब देते थे, क्यों छोड़ा क्या मतलब, छोड़ूंगा नहीं, तुम ही दूध पियोगे, बछड़ा नहीं पिएगा, बछड़ा तो उसका बछड़ा है ना, तुम दूध पी के मोटी बन जाओगी और वो सूखा पकता करके उसको मार दोगी, कैसा माँ है तू, ऐसा जवाब देते थे। और मेरा क्या जाता है बछड़े छोड़ने में, ये तुम्हारा बछड़ा है, तुम्हारा गाय है, मैं बछड़ा छोड़ूंगा तो तुम्हारा गाय का दूध पी के तुम्हारा बछड़ा तगड़ा बनेगा, इसमें मेरा क्या फायदा है, तुम मेरे को डांटते हो, जाने दो, मैं दोबारा छोड़ूंगा नहीं तुम्हारा बछड़े को, तुम्हारा बच्चा मरने दो, तुम ही दूध पियो, लो भी कहीं के, ऐसा जवाब दिया करते थे। तो ये सब जाके गोपियों ने अपने यशोदा मैया के पास बुलाना देते। स्तेयम स्वाद्यर्थ ददीपय कल्पित स्तेय योग, और क्या करते थे, जब भी बछड़े छोड़ देते थे सब घर के लोग क्या करते थे, बछड़े के पीछे भागते थे बछड़े को पकड़ने के लिए, क्योंकि नहीं तो गाय का दूध पी जाएगा। जब भी सारा लोग बछड़े के पीछे लग जाते थे, ये सब झुंड मिलके इनका घर के अंदर डाका डालते थे। किस चीज का डाका, माखन और दधी का, क्योंकि उनको मौका मिलना चाहिए ना चोरी करने के लिए, कोई नहीं रहना चाहिए, सभी रहेंगे तो कैसा खाएंगे, तो ऐसे बछड़े छोड़ दिया, सभी लोग बछड़े के पीछे भागने लगे, तब जाके ये घर में घुसे, बहुत आराम से मक्खन खाते थे, अपने ग्वाल बालों को खिलाते थे, और जो भी खा के पेट भर जाता था सब बंदरों को बुलाते थे, ब्रज में बहुत बंदर हैं, जो ब्रज में गए हैं देखे होंगे, बंदरों को बुला के खिलाते थे। मरकान भोज्य भोक्षण, और मरकटों को खिलाकर बंदरों का जब भी पेट भर जाता था और बंदर खाने नहीं खाते थे, और देखा बंदर भी नहीं खा रहे, ग्वाल वाले नहीं खा रहे, मेरा भी पेट भर गया, तो मटका ही फोड़ देते थे, जा सब फोड़ देते थे। तो मैया बोली होगी, अरे तुम्हारा अगर दही या माखन खाता है, मेरे पास इतना है, तुम खिला क्यों नहीं देते हो मेरे बच्चे को, कितना खाएगा, इतना सा तो पेट है उसका, तुम उसको पेट भर के खिला दो, उसकी तरफ देखेगा नहीं हो। अरे रानी जी क्या बताएं, हम अगर खिलाने के लिए उसको देंगे ना दही या मक्खन, ले ले लाला खा ले पेट भर के, तो क्या कहता है मालूम है, तू बहुत बड़ी दानी बन गई है क्या, हमको इस प्रकार का बिना मेहनत का फल पसंद नहीं है, तो क्या सोचते हैं हमको भिखारी समझी है, माखन खिलाने दे रही है, बहुत बड़ा दानी बन गई है, ऐसा उल्टी जवाब, और हम बिना मेहनत का फल नहीं खाएंगे, ऐसा जवाब। और क्या कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, कहते हैं कि स्तेयम स्वादो, रानी जी यशोदा जी आपका कान्हा को चोरी का स्वाद लग गया है, यानी चोरी करके जो माखन प्राप्त होता है, जो खाद्य प्राप्त होता है, इसका स्वाद लग गया है, इसलिए हम देने वाला माखन या दूध दही नहीं खाता है, चोरी करके ही खाएगा। इसलिए लिखते हैं तेयम स्वादु तद्यर्थ तदिपयम, चोरी करके ही खाएगा, इसका ये आदत पड़ चुका है। चोरी करके खाने से इसको बहुत स्वादिष्ट मानता है, चोरी करके खाना मेहनत समझते थे, हम फोकट का मिला हुआ वस्तु नहीं खाएंगे, बहुत बड़ा दानी बने हो ऐसा पूछते थे। दोबारा कभी मेरे को नहीं बोलना, तुमको मालूम नहीं मेरा बाबा नंद बाबा है, 9 लाख गाय है हमारे पास, कितना चाहिए तुमको, मैं दान दूंगा तुमको, ऐसा जवाब। और दासियां कहती थी, गोपियां कहती थी कि मैया अगर ये लड़का खुद खाता तो ठीक है, अगर ठीक है अपने सखाओं को भी खिलाता कोई बात नहीं, मगर ये लड़का इतना नटखट है कि बंदरों को बुला के खिलाता है, बंदर जैसा कार्य करता है, बंदरों को बुला के खिलाता है, मरकान भक्षण, मरकान बंदरों को खिलाता है, ये खाता था लोग, ठीक है बंदरों को भी खिलाया भाई, इसको भी सह लेंगे हम, मगर जो बचा कुचा है, हमारा बच्चे हैं, हम हैं, उसको घी बनाएंगे, कुछ काम में लगाएंगे, इसलिए इतना मेहनत किए, वो पूरा बर्तन ही तोड़ दिया करता है खाने के बाद, पेट भर जाता है, तभी पेट भर जाता है तो चिल्लाने लगता है कि छी बासी माखन रख दिया आज, कितना अच्छा नहीं लगता है, देखो बंदर लोग भी नहीं खाते हैं, इतना बासी माखन, खराब माखन, कहकर पटक देता था, जा ऐसा कर। द्रव्यालोभे सगुरो कुपित प्रत्य प्रक्रोश तो कान, प्रक्रोश तो कान, तो कान प्रक्रोश अर्थात द्रव्या लोभे सगृह कुपिते, जब अगर कभी किसी के घर में घुस गए हो और पूरा छानबीन कर लिए और वहां कुछ मिला नहीं, कोई दधी का मटका या कोई माखन का मटका मिला नहीं, तब क्या करते थे, बहुत ही क्रोध हो जाते थे, बहुत ही गुस्सा करते थे, ऐसे कमर में हाथ रखे, हाँ माखन नहीं रखा है, कुछ नहीं रखा है, तो बहुत क्रोध के कारण विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं उसमें, उनके टीका में लिखे हैं कि क्रोध के कारण वो क्या कहते थे, थोड़ा सा भी माखन नहीं रखता है, भिखारी कहेगा इसके घर दारिद्र्यता से भर जाएगा, अभी साप देते थे, ऐसे कोई कोई ऐसे साप देते हैं ना, ऐसा इसके घर में हमेशा दरिद्र भरा रहेगा, मेरे लिए माखन या दही थोड़ा सा भी नहीं रखा, ऐसे ही दरिद्र बना रहेगा, और कल मैंने हाथ में आग लेके आऊंगा, इस घर में पूरा आग लगा दूंगा, मेरे लिए माखन नहीं रखेगा। तो आज भी ब्रज में हर एक व्यक्ति जो ब्रजवासी होते हैं वो खास करके केवल लाला के लिए, कान्हा के लिए सीका में माखन या दही इत्यादि रख देते हैं, ऐसे बना के फ्रेश रख देंगे कि लाला आएगा खाएगा, आज भी ये भाव है, नहीं तो लाला ने बोलेगा दरिद्र हो जाएगा तुम्हारे घर। चाहते हैं कि हर व्यक्ति को चाहिए कि भगवान के लिए रखे, ये सारा संसार का वस्तु उन्हीं का तो है ना, उन्हीं का वस्तुओं को हम व्यवहार कर रहे हैं और उनको नहीं दें तो ये कहाँ का न्याय है, और वो चाहते हैं कि मेरे को कोई दे खिलाए, इस प्रकार से प्रेम का भूखे हैं, तो हमारा ड्यूटी बनता है, कर्तव्य बनता है कि परमेश्वर का खुशी के लिए, आनंद के लिए हम कुछ करें, तो जो भी वस्तु हमारा घरों में बनाते हैं उसको पहले भगवान को परोसना चाहिए, उनके लिए भोग इत्यादि रखना चाहिए। तो ऐसा, और बहुत क्रोधित होते थे, चिल्लाते थे और डांटते डांटते चुपचाप नहीं आते थे, उनके जो बच्चे सोया करते थे ना, उन बच्चों को जाके ऐसा नाखूनों से मसल कर उसको पूरा रुला के और वापस आ जाते थे, बहुत तंग करते थे, इस प्रकार के लीलाएं करते थे। इस प्रकार गोपियों का बाहर का भाव था कि मैया तुम्हारा यशोदा हम लोगों को बहुत तड़पा रहा है, और इस प्रकार से कहते समय क्या हुआ करता था, लाला सामने ही हुआ करता था, लाला क्या करता था, कन्हैया माँ की वो साड़ी को पकड़कर पीछे से ऐसे खड़ा होकर ऐसे देख रहा है सबको, बड़े बड़े आंखों से, बड़े बड़े, और उन लोग उसको देख रहे हैं, और जैसे ही वो कंप्लेन करते जा रही थी डरता जा रहा था, डर रहा था कि अभी मैया मारेगी, और डरता जा रहा था, तो इसका डर देखकर, लाला की डर को देखकर ये गोपियां और आनंद हो रही थी, क्योंकि और डरावनी चेहरा को देखकर और आनंद हो रही थी कि कैसा डर रहा है बच्चा, और कंप्लेन कर रही थी, और ये बच्चा माँ का क्या बोलते हैं उसको साड़ी पकड़कर वो ऐसे खड़े रह के देख रहा है उसको, इस प्रकार से। उसके बाद वाले श्लोक में कहते हैं, मैं माफी चाहता हूँ क्योंकि मैंने सोचा था कि 7:45 तक शुरू करूंगा, मगर 8:15 शुरू किए, अगर आप लोगों को कोई एतराज नहीं है तो हम और 5-7 मिनट चला सकते हैं, कह सकते हैं, फिर सभी लोगों के लिए प्रसाद हैं। फिर कहते हैं, माता कही होंगी तुम्हारा अगर दही खा लेता है तो तुम लोग उसको छुपा क्यों नहीं देते हो, कहीं एक ऊंचे जगह पर जिस जहां पे उसका हाथ नहीं पहुंचेगा वहां रख दो। तो कि उसके ये इस प्रकार के कहने से भाव को सुनकर सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं कि ऐसा नहीं है कि यशोदा जी तुम्हारा लाला जो है वो छुपाने पर भी ऊपर रखने पर मानता नहीं है, इतना चालाक हो गया है तो कितने भी ऊपर रखे। हस्ताग्राह्य रचयितं विधिं पीठ उलुक्खलौ, हस्ताग्राह्य का अर्थ होता है अगर हाथ हाथ के पहुंच के ऊपर अगर रखा जाए तो रचयित विधिं, विधि रच लेता था, विधि का अर्थ होता है उपाय, विधि का अर्थ होता है उपाय, रचयिति रचयिति का अर्थ होता है रचना करना, उपाय रचना का उपाय बना लेता था कैसा चुराना है उसको, क्या उपाय करता था, पीठ को उलुखले लघो, पीठक पीठा के ऊपर पीठक समझते हैं ना, पीठक जिसके ऊपर छोटा होता है, और उखल 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 वो है पहले, आजकल तो बहुत सारे मशीन हो गया है, नहीं तो पहले ये उखल में एक बड़ा सा पत्थर का हुआ करता है उसके अंदर चावल इत्यादि डालकर धान इत्यादि डाल के और दूसरे लकड़े से उसको ऐसे कूट के उसमें पाउडर भी बनाते थे और धान से राइस अलग करते थे, ये सब हुआ करता है। अगर कोई व्यक्ति कृष्णमद महाराज कहते हैं अगर कोई व्यक्ति गाँव का होगा तो इस श्रीमद भागवतम को बहुत अच्छे से भावों को समझ पाएगा, खास करके दसवें स्कंद को, और यहाँ पे तो हम लोगों को कुछ भी देखने नहीं मिलता इस प्रकार का परिवेश। इसलिए हम लोग को चाहिए कि हमारा जो संस्कृति है उसको बजाय रखें, कि जितना हो सके इस आधुनिकी वस्तुओं को व्यवहार में ना लाकर जैसे पहले रहा करते थे इस प्रकार से रहे तो उसमें बहुत ही आनंद आता है। तो उखल इत्यादि को उलट कर उसके ऊपर चढ़कर ये चुरा लेता था, और कैसा चुराता था मालूम है यशोदा दी, ये आपका पुत्र जो है ना ये चोरी करने में इतना एक्सपर्ट हो गया है कि वो मटका में कितना माल है और कौन सा माल है ये देखकर पता लगा देता था। कोई लोग अगर जो काम करते हैं उसमें बहुत एक्सपर्ट होते हैं, एक्सपर्ट समझते हैं ना, दक्ष कि तुम्हारा बेटा चोरी में इतना दक्ष हो गया, इतना चोरी कर लिया उसने कि दूर से मटका को देख के उसको पता लग जाता था कितना सामान इसमें है और क्या रखा हुआ है, माखन है या दही है या दूध है, पता लग जाता था उसको। लिखे हैं इसमें लिखते हैं कि एक्सपर्ट यानी बहुत ही दक्ष हो गया है, सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं दक्ष है, वो देख कर ही पता लगा लेता था वो कि के अंदर क्या है, क्योंकि उसमें दही रखने से किस प्रकार से वो गिल्ला होता है, मटका जो है बाहर की तरफ से गिल्ला हो जाएगा और कितना गिल्ला हुआ है, ये सब टेक्निक उनको मालूम था कि मक्खन है या दही है, और अगर मक्खन है तो उसको चढ़ के निकाल लेता था, दही है लिक्विड जैसा है तो उसको नीचे से बहुत अच्छे से एक छेद करके कर देता था छेद के नीचे और पूरा ड्रॉप्स पूरा ऐसे धार बह के उसके मुंह में, और उसका हो जाने के बाद जल्दी दूसरे को, और वो मुंह रखता था उधर ऐसे करके पूरा चोरी करके ये खा जाता है। तुम्हारा बेटा का जो लीलाएं हैं करतुते उसका किस प्रकार से तुम्हारे सामने प्रस्तुत करें, गोपिया कहते हैं ध्यान तो गौरव घृत मणि, हाँ मैया कहती थी अंधार कमरे में रख दो ना जहाँ पे लाइट नहीं है वहां रखो, अरे मैया लाइट नहीं है वहां नहीं, हम अंधेरे कमरे में भी रखते हैं, तुम्हारा बेटे को इतना सारा अलंकार पहना दिया कि दोनों इस अंधेरे कमरे में पहुंच जाते हैं तो ये पूरा लाइटिंग हो जाता है, कमरा उज्जवल हो जाता है और उनको दिखाई पड़ने लगते हैं, और कभी कभी अगर ये मणियां नहीं रहती है तो भी पता नहीं उसके शरीर से कैसा तेज निकलता है कि पूरा घर को उजाला कर देता है और उसको दिखाई पड़ जाता है सब कुछ। इस प्रकार से तुम्हारा जो लाला है इस प्रकार से कार्यों को कर रहा है, इस प्रकार से बहुत सारा उल्लास देते हैं। असलियत में भगवान कृष्ण जो है माखन इत्यादि खाने के लिए बहुत रुचि रखते थे, और इसको चुराना मतलब उनका चुराना गोपियों को परेशान करने के लिए, उनको आनंद प्रदान करने के लिए। एक जगह आप लोगों को मालूम होगा सूरदास जी जो ब्रज में हुआ करते थे, उन्होंने लिखते हैं कि किस प्रकार से गोपी का भाव को गोपी के आनंद प्रदान करने के लिए इस प्रकार से चोरी करते हैं। एक बार कहते हैं कन्हैया अपने मैया से, मैया मोही माखन भावे जो मेवा पकवान कहती तू मोही नहीं रुचवावे। मैं कहते हैं कान्हा ऐसे जाके मैया को पकड़ लिए और कहते हैं मैया तूने जो मेरे को माखन बहुत अच्छा लगता है, मोही माखन भावे और जो मेवा वह पकवान कहती तू मोही नहीं रुचवावे, मेरे को ये रुचता नहीं है, तुम्हें वह पकवान जो बनाया बनाया देती ये मेरे को पसंद नहीं है, मेरे को नहीं रुचता है, मेरे को माखन खाने में बहुत भावता है, यानी बहुत इच्छा है। उस समय ब्रज युवती एक पीछे ठाठी सुनती श्याम की बात, मन मन कहती कबो अपने घर देखे माखन खात। एक गोपी सोचती है कि ये सुन रही थी दूर से, और सुनते ही वो भाव विहर होकर सोचने लगी, आहा कब ये कान्हा ये लाला के मेरे घर में मेरा बनाया हुआ माखन को खाता। और लाला इधर अपने मैया के साथ बात करते करते अंतर्जामी होने के कारण उसके मन की बात को जान लिए। बैठे जाई मतनिया के ढेंग में तब रोहे छिपानी, सूरदास प्रभु अंतर्जामी ग्वालिन मन को जानी। भगवान सूरदास के जो प्रभु है अंतर्जामी है, वो ग्वालिन के मन को जान लिए हैं, और मन को जानकर वहां पे जाके उसके घर से दही चुरा के खाने लगे। और जैसे ही चुरा, वो हमेशा गोपियों का यही काम हुआ करता था कि वो बनाएंगे और एक जगह छुपाएंगे, और छुपा के खुद भी छुपेंगे और देखेंगे ये कैसे आके खा रहा है उसको। छुपा के अपने घर वालों को बोलेंगे मैं वहां माखन छुपाया हूँ, कान्हा आएगा तैयार रहना कि वो खा ना जाए, बाहर जाके लाला मिलेगा तो बोलेगा लाला मैं वहां पे माखन छुपाया हूँ। ऐसे हुआ करते, खुद रखें खुद बता देते थे। तो ये जो ग्वालिनी है ये मन में सोच रही थी ऐसे, तो भगवान ने उनके मन को जाने अंतर्जामी होने के कारण, और जाकर उस माखन को वहाँ पे खाने लगे। जैसे ही खाने लगे और खाकर देखी तो भाव विभोर होकर ये गोपी जो है बहुत जोर जोर से नाचने लगी, कूदने लगी, उनका रोंगटे खड़े हो गए, अष्ट सात्विक विकार इत्यादि प्रदर्शित होने लगे। तो दूसरे गोपियाँ ने पूछने लगे तुमको हो क्या गया सखी, तुमको क्या हुआ, तुम बताते क्यों नहीं हमको, हम इतने बंधु हैं आपके, आपका सखी हैं सख, तो आप हमको बताओ कि आपका ये खुशी का कारण क्या है, तो हम भी खुश होंगे सुनकर, ये खुशियां बांटने से बढ़ता है, ऐसा कहना उन लोगों। तो वो बोलना चाहती थी कि कान्हा ने आके मेरे घर में मेरा बनाया हुआ माखन को खाया, मगर वो बोलते समय अपना गला जो है रुद्ध हो रहा था, रुद्ध हो जाता है। जो भगवान की दिव्य प्रेम की लीलाओं में जो लोग मग्न रहते हैं, भाव भक्ति के स्तर में रहते हैं, उनके अंदर से उनके शरीर में इस प्रकार का विकृत, इस प्रकार से सब भाव प्रकट होते हैं। हमने भी अपने से देखा है, यहाँ पर भी श्रील महाराज ने जब ये कृष्ण कथा का वर्णन वृंदावन में कर रहे थे, उस समय पुतना का उद्धार के बारे में बता रहे थे। पुतना उद्धार के बारे में बताते बताते कि ये शब्द आया कि भगवान कितने कितने दयालु हैं कि एक राक्षसिनी अपने स्तन में कालकूट नामक विष भरकर इसको मारने के लिए आई थी, तब पर भी उसको माँ की पदवी को प्रदान किए। तो कितने दयालु हैं, अगर कोई व्यक्ति मारने के लिए आई, वो भी एक औरत, और वो भी बच्चे को मारने के लिए, बच्चों को तो सभी लोग प्यार करते हैं प्रेम करते हैं, उसको भी मारने के लिए आई थी। इस प्रकार की ग्वालिन, इस प्रकार की एक दुर्दंता एक नारी को भी भगवान कृपावश उनको माँ का पदवी दिया था। इस शब्द को बोलते 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 ऐसे बोलने लगे उनका मुख से और कुछ निकला ही नहीं महाराज के मुख से, और वो पूरा रुद्ध हुए, आंख से आंसू आया, फिर थोड़ी देर के लिए कथा ही बंद हो गया। तो भगवान की जो भक्ति में, प्रेमा भक्ति में, भाव भक्ति इत्यादि स्तर में जो लोग जाते हैं, दिव्य प्रेम में लग जाते हैं, तो उनका इस प्रकार का शारीरिक विकारपन होता है। कभी कभी कोई व्यक्ति यहाँ पे मंदिर इत्यादि में भी आके रोने लगते हैं, ये तो जैसे कि उसको भौतिक कोई चीज़ भी दिखाई पड़ेगा आनंद मिलेगा, ऐसे ही रोने लगेगा वो भी, उसमें कोई वो नहीं। तो उस दासी का यह भाव था। तो भगवान इस प्रकार की लीलाओं को कर रहे थे, इस प्रकार की जो लीला है ये सारा उल्हाना माँ सुना करती थी, और गोपियां जब भी बता देते इस प्रकार की कथाओं को, तो कान्हा क्या करते थे, मैया के पास खड़ा रहते थे, गोपियां बताने के बाद मैया कहती थी ठीक है तुम लोग थोड़ा सतर्क रहो, अभी उसको देखते थी मैया, और जैसे ही लाला के मुख को देखती थी मैया के अंदर पूरा प्रेम भर आ जाता था, और लाला को गोद में उठा लेती थी, और उसको गोद को दे उनको मुँह को देख के चुमने लगती थी। तब लाला क्या करता था, इन गोपियों को देखता था। सारे गोपियां कंप्लेन करने के लिए आए, सामने खड़े हैं, कंप्लेन सुनने के बाद भी मैया ने इसको गोद में उठा लिया, और गोद में उठा कर उसको प्यार करने लगी। तब लाला ने देखा गोपियों को, सो गोपियां उसको देख रहे तो ऐसे करने लगे, चिढ़ाने लगा कि तुम लोग इतना कंप्लेन कर रहे हो कोई फायदा नहीं है, मेरे पास सुनने वाली नहीं है, और मेरा ये कर्तव्यों को तुम मेरे माँ के पास बताने का कोई फायदा नहीं है, जाओ यहाँ से जाओ, कोई फायदा नहीं तुम्हारा, और चुराऊंगा तुम्हारा आके, ऐसा भाव उनको देख उनको चिढ़ाने लगेंगे ऐसा ऐसा करके, महाराज आपने कहते हैं ऐसे वो करते हैं करके भगवान। तो इस प्रकार की भगवान की लीलाएं हैं। एक बार ऐसा ही हुआ था कि एक बार खेल रहे थे अपने आंगन में, पता नहीं एक बार उनका नजर पड़ गया चांद के ऊपर नजर पड़ गया, तो आए और मैया को पकड़े और मैया को बोलने लगे, मैया मैया मेरे को वो चाहिए, ऐसे ही चिल्लाने लगे। थोड़ी देर के बाद मैया बात कर रही थी अपने सखियों से, बोली कि क्या हुआ तेरे को, ना मेरे को चाहिए, तो समझ नहीं पाई। गोपियां अच्छे से बोली कि क्या चाहिए दूंगा ना, वो हाथ दिखाकर बोले माखन चाहिए, दूध चाहिए, कुछ चाहिए नहीं, और हाथ दिखाए कि वो चाहिए चांद। गोपियां बोले अरे बाप रे लाला तुम क्या मांग रहा है, वो एक हंस है, वो आकाश रूपी सरोवर में वो तैर रहा है, वो कैसे प्राप्त हो सकता है। लाला बोलते कि मेरे को वही हंस चाहिए, मैं उसके साथ खेलना चाहता हूँ, मेरे को अभी चाहिए। अभी संकट में आ गए, कहाँ से लाके देंगे उसको। फिर मैया समझाने लगी, समझे नहीं, मैया बोलने लगी कि देख लाला, ये ना तो कोई हंस है ना तो कोई चांद है, ये एक माखन का ढेर है, और तुम मेरे को दो, मैं खाऊंगा ये माखन। ना नहीं, ये माखन तूने नहीं खा सकता, क्यों, क्योंकि देख इस माखन के अंदर कितना काला काला दाग है। हाँ वो क्या है मालूम है, क्या है, बीस है। ये 20 कहाँ से आया, तब जाके बात पलट गया। 20 कहाँ से आया, समुद्र एक खीर सागर था, वहां पे देवता और ये लोग मंथन किए। खीर सागर क्या होता है ना, दूध का समुन्दर होता है। ओ मतलब कितना गायों का दूध दूं दूं कर उसमें डाले हैं। ना नहीं बेटा, कि गायों का दूध से नहीं भरा गया है, क्या झूठ बोलती हो, गायों का दूध नहीं है तो कहां से दूध आया। ना जिन व्यक्ति ने गायों के अंदर दूध रखा है तो उसी व्यक्ति ने समुन्दर के अंदर भी दूध रख सकता है। इसको ऐसे करते करते वो बात को पलट के ऐसे ले ले। इस प्रकार की लीलाओं को भगवान करते रहते हैं गोपियों के साथ। एक बार की कथा है, महाराज बता रहे थे कि एक गोपी थी, ये तो रोज इनको डांटती थी चुराए। एक गोपी आई थी, एक बार कोई काम था, नंद बाबा के आंगन में आ गई और आकर नंद बाबा के गौशाला में गोबर ले रही थी, गोबर और ले रही थी, तो तब कान्हा पहुंच गए वहां पे, पता नहीं उधर घूम रहे थे उधर पहुंच गए, देखे तो गोबर ले रही किसी को बिना बताए, और सामने खड़े हो गए ऐसा हाथ रख के, क्या चोरनी, रोज रोज मेरे को चोर चोर बुलाते हो तुम लोग, आज तुम क्या कर रहे हो, चोर कहीं के बाबा को बुलाऊंगा, नंद बाबा को, यशोदा मैया को दिखा दूंगा कि मैं चोर नहीं तुम चोर हो। गोपी बोली कि नहीं नहीं लाला, मेरे को थोड़ा सा गोबर चाहिए, मेरे गाय का गोबर कुछ काम में यूज हो चुका है, ये चाहिए। ठीक है नहीं बताऊंगा, मगर एक शर्त पर। न क्या शर्त है, ना जितना टोकरी गोबर लेके जाएगी उतना लौंडा माखन मेरे को देना पड़ेगा। तो बालनी बोले ठीक है, इस शर्त में मैं राजी हूँ। बोले ठीक, अगर ठीक है तो ठीक है आप लेके जाओ। और लेके जा रही थी तो गिनूंगा कैसे, ना ठीक है मैं गिनूंगा। वो एक बार लेके जा रही थी, एक थोड़ा सा गोबर पकड़ कर अपने लाला के गाल में ऐसा लाइन खींचती थी, एक बार हुआ, लेके दोबारा लेके जा रही थी और एक लाइन खींचती थी गोबर से लाला के गाल में अपने हाथ से। कभी कभी देर होता था आने में, लाला सोचते थे अगर ये देर करेगी मेरा बिजनेस में मांदा हो जाएगा, ढीलापन आ जाएगा, ज्यादा बिजनेस नहीं हो पाएगा, क्योंकि ज्यादा माखन नहीं मिलेगा, जल्दी जल्दी लेते रहेगी तो बहुत माखन मिलेगा, और ये लेट करेगी तो लेट में एक माखन मिलेगा, तो करके अपने गाल में बहुत सारा गोबर लेके बहुत सारा लाइन खींच लेते थे कि बहुत माखन करे। प्रकार से बहुत सारा बाल लीलाएं करते हैं भगवान, करते करते इस प्रकार की लीलाओं को ग्वालिनियों ने आनंद लेते थे, और इसको बार बार सुनने के लिए मैया के पास जाके उल्हाना देते थे, यानी कंप्लेन करते थे, और इन कंप्लेन को सुनकर माता यशोदा ने सोचने लगी शायद मेरे घर में जो माखन बनता है ये लाला को रुचिकर नहीं होता है, पसंद नहीं होता है, इसीलिए इसने दूसरे के घर में जाके चोरी करके खाता है, शायद ये दासियां बनाती हैं इसीलिए उसमें रुचि नहीं आता है, मैं स्वयं बना और बहुत अच्छे से बनाएगी तब जाके शायद मेरे लाला ये खाकर बहुत संतुष्ट हो जाएगा और दूसरों के घर में चुराने नहीं जाएगा। ये सोचकर मैया यशोदा ने भोर दिवाली के दिन, यानी आज उठी, आज ही कर रही थी, मगर क्योंकि कल हम दिवाली बनाएंगे इसलिए कल हम बताएंगे कि कैसे मैया ने दधी मथ रही थी और लाला को बांध दी थी उखल से। कल हम लोगों ने भगवान को किस प्रकार से उखल से बांधा जाएगा उसके बारे में श्रवण करेंगे, 8वें अध्याय को प्रयास करेंगे खत्म करने के लिए। उसके बाद तीसरे दिन भगवान किस प्रकार से उखल के सहायता से दोनों कुबेर पुत्रों को उद्धार किए थे, इसके बारे में हम तीसरे दिन श्रवण करेंगे। हम आप लोगों को अनुरोध है कि आप लोग कल और परसों भी इसी प्रकार से आके इस कथा का मजा लीजिए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, जसोदा दामोदर की।